वो मुस्लिम के चारों तरफ मुस्लिम कॉलोनीज में लोग रहते थे, मुस्लिम लोग वहां पर रहते थे चारों तरफ। काल बागान बस्ती उस जगह का नाम था। पीछे सभी मुस्लिम रहते थे, तो जब वहां पे दंगा हुआ तो प्रभुपाद वहां पे खेलने के लिए गए थे, एक चौराहे पे खेलने के लिए गए थे। प्रभुपाद को नहीं पता था, प्रभुपाद बताया मुझे नहीं पता था कि दंगा हुआ है, मैं वापस आ रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम अपने घर मत जाओ वहां पे दंगा हो रहा है। प्रभुपाद ने सोचा कि दंगा, तो दंगा का मतलब क्या होता है, उनको पता नहीं था दंगा क्या कहलाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो हर दिन देखता रहता हूँ मुस्लिम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ये सब तो मैंने देखा हुआ है। प्रभुपाद ने सोचा ये तो चलते ही रहता है। और जब प्रभुपाद और आगे आए तो उन्होंने देखा कि दो गुंडे लड़ाई कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति की पूरी दुकान को जला दिया है, दुकान को सामान फेंक दिया है, व्यक्ति को मार रहे हैं। तब प्रभुपाद को पता है, समझ में आया कि दंगा तो बहुत खतरनाक चीज होती है। प्रभुपाद के पीछे एक मुस्लिम व्यक्ति पीछे आने लगा उनको मारने के लिए, चाकू लेकर प्रभुपाद के पीछे आने लगा। और प्रभुपाद तुरंत भागे, वो मुस्लिम उनको मारना चाहता था, प्रभुपाद आगे आगे भाग रहे थे, वो व्यक्ति उनको पीछे पीछे भाग रहा था। तो प्रभुपाद तुरंत अपने घर के सामने आए, घर के अंदर आ गए। और प्रभुपाद बताते हैं जब मैं घर के अंदर आया तो तुरंत अपने रूम में गया और जाके छुप गया, और फिर मैं पूछ रहा था कि दंगे खत्म हो गए कि नहीं हो गए, इतना ज्यादा डर गए थे प्रभुपाद। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह से मुझे उन दंगों का एक्सपीरियंस है। और एक बार मायापुर में इस प्रकार से प्रभुपाद अपने एक शिष्यों को बता रहे थे, मुझे बचपन से पसंद नहीं है कि कोई चीज वेस्ट होनी चाहिए, मैं कभी वेस्ट चीजों को पसंद नहीं करता। जब भी मैं गली में भी जाता हूँ तो अगर कोई नल अगर खुला हो तो उस नल को मैं बंद करता हूँ, मैं कभी देख नहीं चाहता, देख नहीं सकता कि चीजें वेस्ट हो। और इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज को, जब भी आप देखो कि लाइट जल रही है तो लाइट बंद कर देना चाहिए, इस प्रकार से कृष्ण की एनर्जी को बचाना चाहिए। उसके बाद अगला कोट है, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि बचपन में वो अपनी दादी माँ के साथ महाभारत पढ़ते थे, उनके दादी माँ उनको बोलती थी कि महाभारत उनको सुनाइए, और प्रभुपाद उनको महाभारत सुनाते थे, अपनी दादी के साथ वो महाभारत की पढ़ाई करते थे। और एक बार प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको खिलौने की एक बंदूक दी, राइफल उनको खेलने के लिए दिया। तो एक हाथ में उन्होंने राइफल दिया, तो उसको लेने के बाद प्रभुपाद जी अपने पिताजी से डिमांड करते हैं, मुझे दूसरा राइफल भी दो। तो पिताजी ने बोला, गौर मोहन डे उनके पिताजी का नाम था, तो पिताजी ने बोला कि अरे तुम्हें एक राइफल तो अभी दिया है, दूसरा किस लिए चाहिए। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मेरे एक हाथ में एक राइफल होना चाहिए, दूसरे हाथ में दूसरा राइफल होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, तभी बैलेंस होगा। तो इस तरह से उन्होंने लड़ लड़ के, जब उनके पिताजी नहीं दिला रहे थे तो वहां पे लौटने लगे रोड पे, बोले नहीं मुझे राइफल चाहिए। तो पिताजी ने उनको फाइनली राइफल दिलाया, खिलौना बंदूक का खिलौना दिलाया। और प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि जब भी मैं राधा कृष्ण को देखता हूँ तो मैं राधा गोविंद विग्रह को याद करता हूँ, जो कि प्रभुपाद जी मलिक खानदान में जहाँ पे रहते थे वहां पे राधा गोविंद के विग्रह थे। प्रभुपाद जी बचपन से उन विग्रहों के लिए बहुत डिवोटेड थे, उनकी आरती में जाते थे, प्रभुपाद घंटों घंटों वहां पे राधा गोविंद की सेवा को, राधा गोविंद के विग्रह को देखते रहते थे। तो ये कुछ प्रभुपाद के बचपन के घटनाएं प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने शिष्यों को बताई। और प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, उनकी इच्छा नहीं थी। यद्यपि उनकी माँ चाहती थी कि प्रभुपाद लंदन जाके बैरिस्टर बने, पर उनके पिताजी चाहते थे कि अभय जो है वो आगे जाके श्रीमती राधा रानी के भक्त बने। इसलिए उनके घर में कोई भी वैष्णव आते थे, साधु आते थे, तो उनके पिताजी प्रभुपाद के लिए प्रार्थना करते थे, उनसे बोलते थे कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी के भक्त बने। इसलिए उनके पिताजी ने स्पेशली अभय श्री प्रभुपाद को मृदंग भी बजाना बजाना सिखाया था। और प्रभुपाद बचपन से राधा गोविंद मंदिर जाते थे उनके उनके पिता के साथ। और जब प्रभुपाद बहुत छोटे थे, 8 साल 9 साल के थे, उसी समय उनको विग्रह भी दिए थे उनके पिताजी ने, राधा कृष्ण के विग्रह, राधा गोविंद के विग्रह प्रभुपाद जी को दिए थे। प्रभुपाद जी उस विग्रह की बचपन से सेवा करते थे, उनके पिता ने उनको सिखाया था इनका कैसे अभिषेक कराना है। प्रभुपाद उन विग्रह को अपने पास रखते थे। और साथ साथ जब प्रभुपाद जी को हमेशा जगन्नाथपुरी जाना अच्छा लगता था, जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते थे प्रभुपाद, जब बचपन से थे तभी से, कई बार वो जाते थे जब मिडिल एज के हो गए थे, उस समय भी वो जाते थे तो देखते थे जगन्नाथ पुरी जाने के लिए कितना किराया लगेगा, कब मैं जगन्नाथ पुरी जाऊंगा, इस प्रकार से उनकी इच्छा होती थी हमेशा। तो उनके पिताजी को जब पता चला कि प्रभुपाद जगन्नाथ जी को बहुत पसंद करते हैं, तो उनके पिताजी ने उनको जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया, प्रभुपाद के घर पे ही जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। घर पे उन्होंने रथ बनाया, पिताजी ने रथ बनाया और छोटे छोटे विग्रह को रख के प्रभुपाद जी ने वरामदा में और मोहल्ले में रथ यात्रा निकाली थी। और वही रथ यात्रा प्रभुपाद ने जब इस्कॉन संस्था प्रारंभ की, तो दुनिया के बड़े बड़े नगरों में प्रभुपाद ने वही जगन्नाथ रथ यात्रा को स्थापित किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के कुछ कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं। इसके बाद फिर जब प्रभुपाद जी थोड़े बड़े होते हैं, तो पहले उनकी माँ का देहांत हो जाता है और उनके पिता उनकी शादी के समय भी उपस्थित होते हैं। और जब प्रभुपाद की बचपन से बहुत इच्छा होती है जगन्नाथ पुरी जाने की, तो जगन्नाथ पुरी वो जाते हैं। जगन्नाथ पुरी में एक पास टाइम होता है, स्पेसिफिक पास टाइम, उनके कोई रिश्तेदार होते हैं, प्रभुपाद उनके घर पे रुकते हैं। परंतु जब वो देखते हैं कि उनके रिश्तेदार भी मांस खाते थे, क्योंकि वो उड़ीसा और बंगाल में इस प्रकार से कल्चर था, तो उनके उनके वो रिश्तेदार जब मांस खाते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनके घर पे रुकने से मना किया। उससे बोला कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और फिर प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी मंदिर जाके एक भक्त थे वहां पे, उनसे जगन्नाथ जी की लीला सुनते हैं। तो बचपन से प्रभुपाद जी इतने साधुओं को देख चुके थे, कई बार वो ऐसे साधुओं को भी देखते थे जो साधु ज्यादा सिंसियर नहीं थे, मतलब साधु के वेश में ढोंगी थे। तो प्रभुपाद जी का कई बार साधुओं के ऊपर से विश्वास भी कम होने लगा था। तो 1922 में प्रभुपाद, ऑलरेडी उनका विवाह हो गया था, 1918 में प्रभुपाद का विवाह हो गया था। तो 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे नरेंद्र मलिक, वो एक बार प्रभुपाद के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़े सन्यासी, गौड़ीय मठ के एक बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वो गौड़ीय मठ में उल्टा दंगा रोड में प्रवचन दे रहे हैं, वहां पे रुके हुए हैं, तो हमें जाके उनसे मिलना चाहिए। इस प्रकार से नरेंद्र मलिक आके बोलते हैं। पर प्रभुपाद जी, उस समय अभय उनका नाम रहता है, अभय की इस प्रकार से इच्छा नहीं होती है जाने की, क्योंकि वो बहुत सारे साधुओं को देख चुके रहते हैं। परंतु नवीन मलिक उनको बोलते, नहीं, आप इनसे मिलना, ये कुछ अलग साधु है, ये जो साधु हैं ये बाकी साधुओं जैसे नहीं। तो जब प्रभुपाद जी जाते हैं मिलने के लिए, उनके कन्विक्शन के कारण उनसे मिलने के लिए जाते हैं, नहीं तो प्रभुपाद की इच्छा नहीं होती है जाने की। तो प्रभुपाद जब जाते हैं मिलने के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस मंदिर की छत पे, गौड़ी मठ की छत पे प्रवचन चलता रहता है। वो मंदिर अभी इस्कॉन को मिल गया है, वो मंदिर जो जगह जो है इस्कॉन को मिल चुकी है, वहां पे उसका रेनोवेशन किया जा रहा है, वो विग्रह की स्थापना कर रहे हैं जिस जगह पे श्री प्रभुपाद पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे। तो जब ये दोनों जाके बैठते हैं, बैठने की तैयारी, अंदर घुसते हैं, बैठने की तैयारी करते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तरफ देख के बोलते हैं कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं, आप तो जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, आप आध्यात्मिक भगवद गीता का प्रचार, आध्यात्मिक जीवन का प्रचार पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद पहले तो आश्चर्यचकित हुए कि मैं तो अभी इनसे मिला ही नहीं हूँ, पहले अभी आके बैठा हूँ और ये मुझे इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद कुछ लेक्चरों में बाद में बताते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इन्होंने पहली मुलाकात में इस तरह से मुझे कैसे बोल रहे हैं कि आप जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन का प्रचार पूरे संसार में करिए। तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया, क्योंकि प्रभुपाद उस समय महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, स्वतंत्रता संग्राम में प्रभुपाद को बहुत इंटरेस्ट आता था। तो प्रभुपाद जी ने उस समय बोला कि अभी तो देश आजाद नहीं है, अभी तो देश गुलाम है, अभी कौन कृष्ण भक्ति की बात सुनेगा, पहले देश को आजाद होना चाहिए, उसके बाद हम इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार इस देश की आजादी या नहीं, आजाद या नहीं होने पे प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी वस्तु है। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना ज्यादा आवश्यक है, इतना जरूरी है कि वो इसका वेट नहीं कर सकता कि भारत आजाद होगा, क्योंकि भौतिक संसार अपने आप में विकार है, अभी आप लोग ब्रिटिश से लड़ाई कर रहे हैं, बाद में भारत के लोग ही भारत को ठगेंगे। जबकि कृष्ण भक्ति आत्मा से संबंधित ज्ञान है, कृष्ण भक्ति का प्रचार सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब इस प्रकार से उनके आध्यात्मिक गुरु ने बताया तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं उनसे पराजित हो गया और मैं बहुत खुश था अपने आध्यात्मिक गुरु से पराजित होकर। इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं कि उस समय फिर प्रभुपाद ये भी समझ जाते हैं कि कृष्ण भक्ति का जो मैसेज है वो सही हाथ में है। प्रभुपाद अपने मित्र से बोलते भी हैं कि अभी मुझे समझ में आया कि कृष्ण भक्ति का जो मैसेज है ये सही साधु के हाथ में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है ये इस प्रकार से साधु हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते। उस समय प्रभुपाद जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, पर तब भी वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो आज्ञा मिली थी उसको पूरा करना चाहते थे। और प्रभुपाद जी बताते हैं, मैंने मन ही मन उनको अपने गुरु के जैसा स्वीकार कर लिया था, आध्यात्मिक गुरु के जैसा। यद्यपि उनकी दीक्षा 11 साल बाद हुई 1933 में, पर प्रभुपाद जी उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के जैसा ऑलरेडी स्वीकार कर चुके थे। और प्रभुपाद प्लान करते थे कि कैसे प्रचार करें। तो ओरिजिनली प्रभुपाद जी का प्लान था कि बिजनेस करेंगे और फिर उससे पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे से अमेरिका जाके प्रचार करेंगे। ये प्रभुपाद का ओरिजिनल प्लान था। और जब उनको ये, वो पहले जॉब कर रहे थे, डॉक्टर बोस की फार्मेसी फैक्ट्री थी उसमें जॉब करते थे, पर वो उसको छोड़ के कुछ और करना चाहते थे जिससे उनको समय मिले। प्रभुपाद जी का ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर मैं किसी के अंडर में जॉब करूंगा तो 8-9 घंटे मुझे उस व्यक्ति को देना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे पैसा देगा। तो इसलिए प्रभुपाद जॉब को छोड़ के बिजनेस करना चाहते थे जिससे उनको अपने हिसाब से समय मिले, उनको मौका मिले कि वो समय को मैनेज कर सके। तो जब डॉक्टर बोस, इनके फैमिली के एक्चुअली बहुत अच्छे मित्र थे, इनके पिता के बहुत अच्छे मित्र थे, तो जब उनको पता चला कि अभय जो है वो जॉब छोड़ना चाहता है, तो उन्होंने इनको ऑप्शन दिया कि आपको जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी कंपनी का कार्य आप नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है प्रयाग में और बाकी सब जगह पे, यूपी इन सब जगह पे आप इसका कार्य देख सकते हैं। तो उन्होंने ऑफर दिया प्रभुपाद जी को बिजनेस करने के लिए, उनकी कंपनी का बिजनेस करने के लिए ऑफर दिया, और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज उनको बना दिया, एक्चुअली पूरी नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज इनको बना दिया। इस कारण से प्रभुपाद फिर कोलकाता से प्रयाग आते हैं और प्रयाग में निवास करना चालू करते हैं। उसी समय प्रभुपाद जी गौड़ी मठ के भक्तों से मिलते हैं प्रयाग में, और गौड़ी मठ की स्थापना करने में भी प्रभुपाद मदद करते हैं उस समय। और एक ब्रह्मचारी रहते हैं गौड़ी मठ के, प्रभुपाद उनके साथ प्रचार के लिए भी जाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद को लगता था कि जो सेफ्रॉन ऑर्डर है उससे प्रचार होता है, लोग साधुओं की इज्जत करते हैं। तो एक नए ब्रह्मचारी थे और प्रभुपाद जी तो सीनियर गृहस्थ थे उस समय, प्रभुपाद जी उन ब्रह्मचारी को लेके जाते थे। वो ब्रह्मचारी लेक्चर देना नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद क्या करते थे, पहले ऑडियंस में बैठते थे, उसके बाद वो ब्रह्मचारी व्यासासन पे बैठते थे और जय राधा माधव वो ब्रह्मचारी करते थे, उसके बाद प्रभुपाद जी ऑडियंस ऑडियंस की तरफ मुंह करके फिर लेक्चर देते थे। पूरा लेक्चर प्रभुपाद जी देते थे, वो ब्रह्मचारी आसन पर बैठे रहते थे, और लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद लोगों से बोलते थे, जाओ आप उन साधु के आशीर्वाद ग्रहण करो। इस तरह से प्रभुपाद को प्रीचिंग करना इतना अच्छा लगता था कि खुद प्रचार करते थे और जिससे कि लोग आए उसमें, इसके लिए वो सैफ्रॉन साधु को, ब्रह्मचारी को लेके जाते थे। और प्रभुपाद गौड़ी मठ के बहुत भक्तों की बहुत मदद कर रहे थे, साथ ही साथ गौड़ी मठ में रेगुलरली प्रभुपाद जी जाते भी थे और गौड़ी मठ में फाइनेंशियली भी मदद करते थे, अलग अलग स्ट्रेटेजिकली भी गौड़ी मठ की मदद कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी की जो वाइफ थी, राधा राधा रानी देवी, वो बहुत पुण्यशाली महिला थी, परंतु साथ साथ कृष्ण भक्ति में उतना ज्यादा, एक्चुअली कृष्ण भक्ति में भी इंटरेस्टेड थी, परंतु वो इस प्रकार से मिशनरी वर्क, प्रभुपाद जी जिस तरह से चाहते थे प्रचार करना, उसमें वो सपोर्ट नहीं करती थी, और एक तरह से पुण्यशाली महिला बोली जा सकती है। वो अपनी फैमिली को मेंटेन करना चाहती थी और घर पे रह के जो भी होता है उतना करना चाहती थी, बट प्रभुपाद जी प्रचार करना चाहते थे, ये प्रभुपाद जी का क्लियर मूड था। तो उससे संबंधित प्रभुपाद जी ने जब प्रचार करना चालू किया, प्रयाग में रहते हुए प्रभुपाद जी ने बिजनेस को एक्सपेंड किया, और बिजनेस को एक्सपेंड करते करते अलग अलग दूसरे जगह पे भी प्रभुपाद ने फिर अपनी फैक्ट्री को खोलना चालू किया। जैसे प्रयाग के बाद लखनऊ में प्रभुपाद ने अपनी फैक्ट्री को खोला। एक्चुअली फॉर द टाइम बीइंग जब तक प्रभुपाद के ये पास टाइम चल रहे हैं तब तक उनको अभय अभय बाबू के नाम से बोलना ज्यादा अच्छा है। तो अभय अभय बाबू ने उस समय लखनऊ में फैक्ट्री चालू किया, प्रयाग में भी एक्सपेंशन चालू किया, और उसके साथ साथ बहुत रेगुलर ट्रेवल करते थे। तो उस समय जब वो धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता था, परंतु फिर कुछ ना कुछ बिजनेस में समस्या आने लगती थी। तो प्रभुपाद जी उसको समझ नहीं पा रहे थे। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने लखनऊ में एक फैक्ट्री को खोला और उसी बीच वो झांसी जाते हैं। झांसी डिवोटीज स्थापना करने के लिए, संस्था की स्थापना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, परंतु उनको पता चलता है कि आग लग गई है और उनका नौकर सारा पैसा लेके भाग गया। तो इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। जब ये झांसी में रहते तब घटना होती है। और साथ साथ एक बार वो अपने गुरु से मिले, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वृंदावन में राधा कुंड में मिलते हैं। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं कि मेरा मन बिजनेस में, मैं बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं जानता नहीं हूँ कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि आप बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका हृदय बिजनेस में नहीं है, आपका हृदय तो कृष्ण के पास है, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार से बोला। और उसी समय उन्होंने इनको निर्देश भी दिया कि जब भी आपको आगे मौका मिले तो बुक्स को प्रिंट करिएगा, आध्यात्मिक बुक्स को प्रिंट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा जब भी आपके पास पैसा आए। इसी बीच प्रभुपाद जी गौड़ी मठ में और भी एक्टिव हो गए मैनेजमेंट में। गौड़ी मठ में जब मुंबई में जब उनकी ब्रांच खुली तो उनके कुछ गॉड ब्रदर्स उनको मुंबई ब्रांच का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि नहीं, अभी अभय बाबू को छोड़ दो, जब भी उनका उनका समय आएगा तब वो सब कुछ करेंगे, अभी उनको मैनेजमेंट में डालने की आवश्यकता नहीं है। और जब वो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय से मिले थे तब वो इनको मतलब इनकी सुनने में बहुत रुचि है। क्या हुआ, एक बार जब ये वृंदावन गए थे तो वृंदावन में मथुरा में शेषशायी मंदिर है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे मथुरा में रुके थे और वो कक्षा कक्षाएं कर रहे थे। तो एक बार एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ भक्त जो तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्लास भी होगी। तो ज्यादातर लोग दर्शन के लिए चले गए थे, पर अभय जो थे, अभय बाबू जो थे, वो सोचते हैं कि मैं अगर शेषशायी विष्णु को देखूंगा या धाम के दर्शन करूंगा तो मैं कितना समझ पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं आध्यात्मिक गुरु से सुनता हूँ। तो ये क्वालिटी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत पसंद आई थी। उन्होंने बोला भी था बाद में कि अभय बहुत सिंसियर है क्योंकि वो सुनना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि जब हम आध्यात्मिक मैसेज सुनने के लिए सिंसियर होते हैं तो उससे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं। इवन अभय अभय बाबू की दीक्षा के समय भी, जब उनसे जब इनकी दीक्षा होने वाली थी उस समय भी जब किसी ने इनको इंट्रोड्यूस करना चाहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यही बोला था कि मैं जानता हूँ अभय बाबू को और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है, ही लाइक्स टू हियर, इस प्रकार से भक्ति सिद्धार्थ ने बोला था। और उसके बाद 1933 में इनका दीक्षा हुआ। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने उनको नाम दिया अभय चरण अरविंद दास, इस प्रकार से उनका नाम मिला। और उस समय तक ये बहुत एकम्प्लिश्ड गृहस्थ भक्त थे, गौड़ी मठ से कनेक्टेड, और ऑलरेडी उनको पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। तो बहुत भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर की पुस्तकों को पढ़ते थे और उनके लिखे हुए जो लेख थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत पसंद थे। भक्ति सिद्धांत ने इस प्रकार से भी बोला था कि अभय बाबू जो भी लिखते हैं वो उनको छाप देना चाहिए। द हार्मोनिस्ट जो उनकी मैगजीन थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी अभय बाबू लिखते हैं वो तुरंत तो छाप देना चाहिए, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्मदिन आविर्भाव दिवस के समय श्रील प्रभुपाद ने एक पोयम लिखी थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको प्रशंसित करने के लिए। और उस पोयम का छठवां स्टेंजा जो था वो इस प्रकार से था, एब्सोल्यूट इज सेंसियंट, दाओ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी, दाओ हैज मूव्ड। तो ये पैराग्राफ भक्ति सिद्धांत को बहुत पसंद आया था। इस पैराग्राफ का मीनिंग था कि आपने ये बताया कि परम सत्य जो है वो सेंसियंट है, व्यक्तित्व है, और आपने ये प्रूफ किया इस संसार को, मतलब भक्ति सिद्धांत ने प्रूफ किया। और इम्पर्सनल कैलेमिटी दाओ हैज मूव्ड, मतलब संसार में जो निराकारवाद फैला हुआ है, निराकारवाद की जो समस्या है उसको आपने संसार से हटा दिया। तो ये लाइन सुन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अभय बाबू जो भी लिखते हैं उनको हार्मोनिस्ट मैगजीन में तुरंत छाप देना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके बीच में कनेक्शन था। शिल्प प्रभुपाद उनको लेटर्स में लेटर लिखते थे, और कभी कभी उनसे मिलना होता था। मिले थे और एक बार कोलकाता में मिले थे उसके बाद। और इवेंचुअली धीरे धीरे 1936 के लगभग शिल प्रभुपाद जब उनसे मिलते हैं, भक्ति सिद्धांत से मिलते हैं, तब भक्ति सिद्धांत बहुत डिस्टर्ब, और वो प्रभुपाद जी को अकेले में बताते भी हैं कि बाग बाजार गौड़ी मठ जो मैंने बनाया है, मैंने इतना पैसा लगा के उस गौड़ी मठ को बनाया है और अभी उसमें लड़ाई हो रही है। मेरे शिष्य इसलिए लड़ाई कर रहे हैं कि इसको नदी के किनारे वाला, गंगा के किनारे वाला कमरा मिलना चाहिए, गंगा का व्यू वाला, जहां से गंगा नदी उनको दिखाई दे। इसके लिए उनके सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग लड़ाई कर रहे। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत ने बहुत निराश होकर प्रभुपाद जी को बताया। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इस पूरे मठ को बेच दूं और इस मठ की जो ईंट है जिससे मठ को बनाया गया है, उस ईंटों को बेच के मैं पैसा जो मिले उससे बुक्स को प्रिंट करूं और बुक्स को सेल करूं। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत बहुत नाराज थे अपने शिष्यों से उस समय, और बता रहे थे कि मेरे शिष्य बहुत इमेच्योरली व्यवहार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है मेरे जाने के बाद मठ में आग लग जाएगी, आग मतलब लड़ाई हो जाएगी। तो प्रभुपाद को पता चला उनके उनके गुरु की मनोदशा, और प्रभुपाद ने बाद में एक लेटर भी लिखा कुछ समय बाद। प्रभुपाद ने उस लेटर में लिखा कि मैं तो गृहस्थ हूँ, आपके सन्यासी से आपके साथ हमेशा निवास करते हैं, मैं तो आपके साथ निवास नहीं करता हूँ, मैं आपकी किस सेवा करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। और उस पत्र के उत्तर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि वो बताते हैं कि अगर आप कृष्ण भक्ति का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करेंगे पूरे संसार में, तो मैं श्योर हूँ कि आप अपना भी भला करेंगे और पूरे संसार का भी भला करेंगे। ये लेटर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लास्ट लेटर था प्रभुपाद के लिए। और इस लेटर के मिलने के कुछ, जब प्रभुपाद जी को ये लेटर मिला उसके कुछ दिन बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार से चले गए थे। 31 दिसंबर 1936 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार से भगवत धाम चले गए थे। उसके कुछ ही पहले, 2 हफ्ते पहले ये लेटर उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा था। तो प्रभुपाद जी को ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, पहली मीटिंग में उनसे जो बोला गया था कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, वो ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके जाने के पहले भी अभय बाबू से यही बात बोला। तो 2 निर्देश प्रभुपाद जी को क्लियरली मिले थे। एक निर्देश तो ये कि कृष्ण भक्ति का प्रचार आंग्ल भाषा में पूरी दुनिया में करना है। दूसरा निर्देश, जब भी पैसा मिले तो बुक्स को प्रिंट करके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इन 2 इंस्ट्रक्शन के लिए प्रभुपाद जी ने इवेंचुअली 2 संस्थाओं को बनाया। पहले इंस्ट्रक्शन से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बनाया, दूसरे इंस्ट्रक्शन से प्रभुपाद जी ने बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को बनाया। तो आध्यात्मिक गुरु के 2 निर्देश से 2 संस्थाएं बन गई। इस प्रकार के शिष्य होना चाहिए जो कि आध्यात्मिक गुरु के निर्देश को एज इट इज लेके अपनी जिंदगी उस निर्देश को पूरा। नोट नहीं किया था, उन्होंने क्लियरली बताया था कि कलेक्टिव मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी के द्वारा कलेक्टिवली इसको मैनेज करना, परंतु उनके निर्देश को उन्होंने नहीं माना उनके शिष्यों ने, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ कुछ लोग मिलकर एक संस्था को मैनेज करेंगे। मैनेजर्स कैसे इस संस्था को मैनेज करेंगे? संस्था को मैनेज करने के लिए तो आचार्य की जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक संस्था हमेशा आचार्य से चलती है। इस प्रकार से उनके शिष्यों ने सोचा और भक्ति सिद्धांत के निर्देश को वो एकदम से क्लियरली नहीं ले पाए, तो इस कारण से जैसे ही दो विभाग बने, उसमें से एक विभाग ने आचार्य को स्थापित किया, और जिस आचार्य को स्थापित किया वो आचार्य का एक दो दिन के अंदर ही पतन हो गया और वो विभाग टूट गया। तो दूसरा जो विभाग था, उस विभाग में पैसे को लेके कुछ कुछ क्या बोलते हैं स्कैम, पैसे को लेके फाइनेंशियल स्कैम हो गया, उसके कारण से वो विभाग भी टूट गया। और धीरे धीरे फिर सब कुछ गौड़ी मठ टूटता गया। प्रभुपाद जी अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखे कि किस प्रकार से उनके अध्यात्म गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था, उनके गॉड ब्रदर्स ने फॉलो नहीं किया। तो प्रभुपाद जी का मन ऑलरेडी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था ये सब देख के। उन्होंने अपने गॉड ब्रदर्स से बार बार बोला कि साथ में काम करते हैं, साथ में गौड़ी मठ को मैनेज करते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु चूंकि वो गृहस्थ भी थे, कोई लीडिंग पोजिशन में नहीं थे, इसलिए प्रभुपाद की बात किसी ने सुनी नहीं। और प्रभुपाद बहुत दुखी थे कि उनके गुरु ने इतनी मेहनत करके उस संस्था को बनाया और वो संस्था इस प्रकार से उनके सामने टूट रही है। प्रभुपाद जी ने अपनी कुछ कुछ राइटिंग्स में भी इस तरह से लिखा है, जैसे हमने जो वृंदावन भजन हमने पढ़ी थी कुछ महीनों पहले, वृंदावन भजन हमने डिस्कस किया था, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद जी इस तरह से लिखते हैं इसी इसी घटना के बारे में। तो तब पर उस समय तो अभय बाबू के हाथ में कुछ नहीं था, वो क्योंकि गृहस्थ थे, वो कितना चीज देख सकते थे, पर उनके मन में ये इच्छा थी कि उनके गुरु की जो इच्छा है वो मैं, मुझे गुरु का जो निर्देश है वो उनको पूरा करना है, उसके लिए वो एकदम क्लियर थे। तो प्रभुपाद जी जब बिजनेसमैन थे, उसी समय उनके पास एक मित्र आए थे, और उस मित्र ने उनसे पूछा था कि अभय बाबू आपको पता है कि कृष्ण प्रेम की क्या दवाई है, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कृष्ण प्रेम की दवा दीजिए, आप सभी लोगों को दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, मुझे दीजिए कृष्ण की, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके, कृष्ण प्रेम की दवा। उस दवाई का नाम है ये मेडिसिन मेरे पास है, यद्यपि मैंने अभी तक पूरी तरह से इस मेडिसिन को नहीं लिया है, परंतु मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी जिंदगी में मैं इस मेडिसिन को पूरी दुनिया को बताऊंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने मित्र को ये चीज बताई थी। और प्रभुपाद जी ने इवन अपना जो जहाँ पे रहते थे, इवेंचुअली जब वो वापस कोलकाता में आके रहने लगे, जब उनका बिजनेस अनसक्सेसफुल हुआ, तब वो फिर से कोलकाता में आके रहने लगे थे अपने पुराने घर में। तो उस समय प्रभुपाद जी नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और ऊपर का फ्लोर उन्होंने गौड़ी मठ को दे दिया था। उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता था ये कि वो गौड़ी मठ को ये सब मदद करते रहते थे, परंतु प्रभुपाद तब भी चाहते थे, तो ऊपर का फ्लोर उन्होंने गौड़ी मठ को दे दिया था। वहाँ गौड़ी मठ के ब्रह्मचारी जो सन्यासी लोग आके प्रचार करते थे, वहां पे रुकते थे, निवास करते थे। कोलकाता में ये घर था, सीताकांत बनर्जी लेन में। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी वहां पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करने वाली सीढ़ियों पे बैठे थे और भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर डोला गोविंद शास्त्री वहां पे आते थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते थे उन लोगों को व्याकरण सिखाने के लिए, संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए। तो डोला गोविंद शास्त्री जी एक बार प्रभुपाद जी जब चैंटिंग कर रहे थे तो वो आते हैं वहां पे, उतर के सीढ़ियों पे आके इनसे बोलते हैं कि अभय बाबू अभी अभी मैंने क्लास दी उस श्लोक के ऊपर जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी थे ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, इस श्लोक के ऊपर मैंने अभी अभी क्लास दी, परंतु मुझे पता नहीं कि ये कैसे होगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में होगा, मैं यद्यपि क्लास तो दे के आया परंतु मैं खुद भी इसके ऊपर इतना श्योर नहीं हूँ कि ये कैसे होगा, कौन करेगा। तो प्रभुपाद जी चैंटिंग करते करते उठे, दो सीढ़ियां नीचे गए और फिर पलट के उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आप देखना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में से ही कोई एक मूर्ख जिसने भक्ति सिद्धांत के चरणों में अपने आप को समर्पण किया है, वो एक दिन इस कार्य को पूरा करेगा और कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो डोला गोविंद शास्त्री जो थे, उन्होंने जब प्रभुपाद का इस प्रकार से कॉन्फिडेंस देखा तो थोड़े से वो अचंभित हुए कि अभय बाबू इस प्रकार से कैसे बोल रहे हैं। पर उनके मन में ये फीलिंग भी आया कि क्या मैं वो भक्त हूँ जो कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं भी तो भक्ति सिद्धांत का शिष्य हूँ। तो थोड़ा उनको खुशी हुई, पर प्रभुपाद फिर दो सीढ़ियां और नीचे जाके बोलते हैं कि आप वो व्यक्ति नहीं होंगे। तो ये बात डोला गोविंद शास्त्री को बहुत खराब लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं होगा तो कौन होगा, अभय बाबू होंगे क्या? इनको इतना घमंड क्यों है कि हमारे गुरुदेव की इच्छा को पूरा कर पाएंगे। बाद में डोला गोविंद शास्त्री प्रभुपाद जी के शिष्य को बताते हैं कि उस समय मुझे खराब लगा था, परंतु जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और शिष्यों को लेके भारत आए, तब उनको पता चला कि अभय बाबू ने वो करके दिखा दिया। आध्यात्मिक भक्ति सिद्धांत के शिष्यों में से केवल अभय बाबू ऐसे निकले जो कि कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में लेके जा पाए। बाद में वो डोला गोविंद शास्त्री इस चीज को याद करते हैं। और प्रभुपाद जी ने बहुत मुश्किल से बैक टू गॉडहेड नाम से मैगजीन चालू की 1944 में, 1944 में। उस समय भारत में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में प्रभुपाद जी ने इस मैगजीन को चालू किया। उस समय पेपर मिलना बहुत मुश्किल था, कागज नहीं मिलता था उनको, तो बहुत महंगा कागज खरीद के उन्होंने पहला एडिशन छापा। और पहले एडिशन में प्रभुपाद जी ने बताया कि किस प्रकार से विश्व युद्ध जो है वो संसार के लिए घातक है और किस प्रकार से समाज में पूरी तरह से शांति स्थापित की जा सकती है। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो खुद ही लिखते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, प्रिंट करते थे और खुद ही बैक टू गॉडहेड को सेल करते थे। अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से मिलके बैक टू गॉडहेड को लोगों को प्रदान करते थे। और इसी बीच में प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सपने में आए, वो बोला कि अभय अभी आपको संन्यास लेना चाहिए। प्रभुपाद खुद ही बताते हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु से सुना संन्यास के बारे में तो वो डर गए। प्रभुपाद सोचते थे कि कैसे संन्यास लेंगे, अभी तो मेरी फैमिली है, मैं संन्यास कैसे लूंगा। पर प्रभुपाद जी जब अपने गॉड ब्रदर से मिलते हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से, तो श्रीधर महाराज भी उनको एनकरेज करते हैं कि अभय बाबू आपके तो आपको ज्ञान भी है, शास्त्रों को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अभी सोचना चाहिए संन्यास के बारे में। तब प्रभुपाद जी को लगा कि शायद उनके आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो उनके गॉड ब्रदर के थ्रू उनसे 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 संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं। और इसी बीच में घर में एक ऐसी घटना हुई कि प्रभुपाद अपना घर छोड़ के चले गए। क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का एक ट्रांसलेशन लिखा था, ट्रांसलेशन एंड पर्पोट, अनुवाद तात्पर्य सब कुछ लिखा था भगवत गीता का, और उसको लिख के प्रभुपाद जी कहीं बिजनेस के चक्कर में बाहर गए थे। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उस पूरे भगवत गीता के ट्रांसलेशन को रद्दी में बेच दिया। एक व्यक्ति उनके पास आया था तो उनके पास चाय के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चाय के लिए पैसे जुगाड़ने के लिए भगवत गीता के ट्रांसलेशन को उन्होंने रद्दी में बेच दिया। जब प्रभुपाद आए उनको पता चला कि उनकी वाइफ ने, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत गीता पे बहुत मेहनत कर रहे थे, पूरी भगवत गीता उन्होंने लिख ली थी। अभी हम जो भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी ने फिर से लिखी अमेरिका जाने के पहले, अमेरिका जाने के बाद। परंतु अमेरिका जाने के पहले प्रभुपाद जी एक बार पूरी भगवत गीता लिख चुके थे, पर पूरी पूरी भगवत गीता उनकी वाइफ ने रद्दी में बेच दी थी। तो जब प्रभुपाद को पता चला उनको बहुत गुस्सा आया और प्रभुपाद ने बोला अपनी वाइफ से कि अभी आपको डिसाइड करना होगा कि आप मुझे चाहती हैं कि इस चाय को चाहती हैं। तो उनकी वाइफ ने सोचा प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं, उन्होंने चाय को उठा के पीना चालू कर दिया। और प्रभुपाद समझ गए कि उनकी वाइफ का डिसीजन क्या था। और उसी दिन प्रभुपाद जी अपना घर छोड़ के चले गए और उसी दिन प्रभुपाद घर छोड़ के चले गए और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने उनको ढूंढा, परंतु प्रभुपाद जी फिर नहीं मिले। प्रभुपाद जी घर छोड़ के चले गए, फिर वृंदावन गए और वृंदावन में जाके प्रभुपाद जी ने 59 ईयर्स की एज में संन्यास आश्रम स्वीकार किया, अपने आध्यात्मिक गुरु से ही संन्यास, आध्यात्मिक गॉड ब्रदर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से प्रभुपाद ने संन्यास लिया। और प्रभुपाद जी का संन्यास हुआ था केशव जी गौड़ीय मठ में, जो मथुरा में है वहां पे उनका संन्यास हुआ था। संन्यास में भी, संन्यास के बाद प्रभुपाद जी से बोला गया लेक्चर देने के लिए, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश में इतने ज्यादा फिक्स थे कि वहां पे बहुत ही कम लोग थे जो इंग्लिश समझते थे, परंतु प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर इंग्लिश में दिया। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद कितना सोचते थे कि उनके गुरु ने उनको इंग्लिश में प्रचार करने के लिए बोला है, तो प्रभुपाद उस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए। और संन्यास के बाद भी प्रभुपाद जी हमेशा कोशिश कर रहे थे कि उनके गॉड ब्रदर्स को कैसे वो एक साथ लेके आए, परंतु उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। और साथ साथ एक और केस हुआ जिससे कि प्रभुपाद का गौड़ी मठ से थोड़ा संबंध भी खराब हुआ, क्योंकि प्रभुपाद एक बार आगरा गए प्रचार करने के लिए, और आगरा जाते समय, आगरा जब वो जाते हैं तो आगरा में क्लास के बाद एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से शेल्टर लेना चाहते हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से शेल्टर लेना चाहते हैं, और जब वो शेल्टर लेने के लिए प्रभुपाद जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या मुझे दीक्षा देंगे, तो जो उनके साथ में प्रभुपाद जी के साथ में जो भक्त रहते हैं वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको दीक्षा चाहिए है तो आप हमारे गौड़ी मठ में आके फॉर्म भर के दीक्षा ले सकते हैं, यहाँ पे दीक्षा का कोई सिस्टम इस प्रकार से नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद जी को समझ में नहीं आती है और प्रभुपाद जी थोड़े नाराज हो जाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी फिर उस गौड़ी मठ से चले जाते हैं दूसरी जगह। हालांकि बाद में उनके गॉड ब्रदर जो हैं वो अपने शिष्यों को भेज के प्रभुपाद जी से माफी भी मांगते हैं, परंतु प्रभुपाद जी समझ जाते हैं कि अभी वहां पे रहना ठीक नहीं। और प्रभुपाद जी गौड़ी मठ की तरफ से प्रचार करना चाहते थे, परंतु गौड़ी मठ उनको फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं अमेरिका जाता हूँ, आप लोग अगर मुझे फाइनेंस करेंगे, अगर आप लोग स्पॉन्सर करेंगे तब मैं अमेरिका जाके प्रचार करूंगा। तो गौड़ी मठ ने रिप्लाई किया कि आप पहले हमारे मठ को ज्वाइन करिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको भेजना है कि नहीं। इसी तरह से प्रभुपाद जी एक एक मठ में एक रेसिडेंट के जैसे भी रहना चालू किए, और जब प्रभुपाद जी आर्टिकल लिख के उसमें उस मठ की मैगजीन में भेजने लगे, हार्मोनिस्ट में भेजने लगे, और प्रभुपाद जी के आर्टिकल बहुत पसंद होने लगे, तो उनके ये गॉड ब्रदर को ईर्ष्या होने लगी कि ये इतने टैलेंटेड कैसे हैं। तो उनको धीरे धीरे उस गौड़ी मठ से भी हटा दिया गया। दैट मीन्स प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया गौड़ी मठ के साथ में काम करने का। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ने इस्कॉन केवल पहली बार में ही खोल दिया। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि गौड़ी मठ के द्वारा ही प्रचार हो, परंतु गौड़ी मठ की लीडरशिप ने जब उनको कभी भी सम्मान नहीं किया और उनको प्रचार के लिए कभी एनकरेज नहीं किया, तब फाइनली प्रभुपाद जी को गौड़ी मठ से हट के इस्कॉन बनाना पड़ा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभुपाद ने इस्कॉन क्यों बनाया जब गौड़ी मठ था ऑलरेडी। तो इस्कॉन प्रभुपाद जी की पहली अप्रोच नहीं थी, उनकी पहली अप्रोच यही थी कि गौड़ी मठ के द्वारा वो भारत के बाहर जाके प्रचार करेंगे, परंतु गौड़ी मठ की प्रेजेंट लीडरशिप ने जब उनको कोई मौका नहीं दिया, उनके गॉड ब्रदर्स भी उनसे ईर्ष्या होने लगे जब वो प्रचार करना चाहते थे, तब प्रभुपाद जी के पास कोई और चारा नहीं था। इवन अमेरिका जाने के बाद भी उन्होंने लेटर लिखा कि आप अगर मुझे ऑथोराइज करें तो मैं गौड़ी मठ की तरफ से यहाँ पे प्रचार, गौड़ी मठ का सेंटर खोल सकता हूँ। तब भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग कारण थे, परंतु प्रभुपाद को जब सपोर्ट नहीं मिला तब प्रभुपाद ने अकेले फिर इस्कॉन की स्थापना की। और इसके बाद प्रभुपाद जी वृंदावन में रहना चालू किए। जब उनको पता चला कि अभी उनको अकेले ही सब कुछ करना है, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वृंदावन में रहना प्रारंभ किया। पहले केसी घाट में कुछ समय तक रहे, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रहने लगे। राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने के कमरों में प्रभुपाद जी रहते थे। दो छोटे छोटे कमरे थे वहां पे। प्रभुपाद जी करीब 1962 से 65 तक वहां पे, 3 साल तक वहां पे निवास किए। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते थे और उसको प्रिंट करने के लिए नई दिल्ली आते थे, और चूंकि नई दिल्ली में उनको कुछ दिन निकालना पड़ता था, इसलिए नई दिल्ली में भी उन्होंने एक जगह एक मंदिर में रहते थे, चिप्पी बाड़ा मंदिर। वो मंदिर भी अभी इस्कॉन का मंदिर हो गया है, इस्कॉन चिप्पी बाड़ा मंदिर, पुरानी दिल्ली में वो मंदिर है। तो जब वो वृंदावन में रहते थे तब वो बहुत इंटेंस राइटिंग भागवत का ट्रांसलेशन करते थे, और एक कुछ कुछ लोग बताते भी हैं कि आधी रात में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि में जब सफाई करने जाते थे, झाड़ू लगाते लगाते रोते थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है परंतु मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आध्यात्मिक गुरु का जो सपना हो सपना है जो निर्देश है उस निर्देश को पूरा कर सकूं। मिड ऑफ द नाइट 1 बजे रात में, 2 बजे, इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे रूप गोस्वामी की भजन कुटीर में बैठ के भजन करते थे, वहां पे सेवा करते थे, और हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि कैसे वो आध्यात्मिक गुरु का निर्देश पूरा कर सके। इसी बीच में प्रभुपाद जी को पता चला न्यूज़पेपर से कि जापान में एक आध्यात्मिक सम्मेलन है, पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से साधु जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा हुई वहां जाने की। प्रभुपाद जी ने वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको लेटर भी लिखे, उनको आने के लिए इनविटेशन भी मिला, परंतु प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। ढूंढ रहे थे कि कैसे कैसे जाएंगे, स्पॉन्सरशिप भी ढूंढ रहे थे, परंतु स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिला। फिर उन्होंने उनके ऑर्गेनाइजर को ही बोला कि आप ही स्पॉन्सर कर दीजिए, तो उनके ऑर्गेनाइजर्स ने भी, फिर फाइनली ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी नहीं जा पाए वहां पे। परंतु वहां जाने के प्रयास में प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। वो पुस्तक प्रभुपाद जी ने जापान जाने के प्रयास में लिखी। वो पुस्तक अभी भी अवेलेबल है, प्रभुपाद जी की ऑलमोस्ट ऑल बुक्स में से सबसे पहली बुक वही लिखी थी, क्योंकि भारत में उस बुक को लिखा गया था। तो प्रभुपाद बीटीजी मैगजीन छपवाते थे, परंतु जब वो एक बार छपवाने के लिए गए, प्रिंटिंग के लिए गए, तो उस प्रिंटर, जो व्यक्ति प्रिंट करता था, उसने बोला कि आप ये मैगजीन क्यों छापते हैं, मैगजीन तो लोग छोटा छोटा सा, छोटी पतली पतले से आर्टिकल लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फेंक देंगे, आपको बुक लिखना चाहिए। तब प्रभुपाद ने सोचा कि इस व्यक्ति के मुख से मेरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल गए हैं। तब प्रभुपाद ने सीरियसली इस चीज को लिया कि अभी उनको बुक लिखना चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने श्रीमद भागवत की कमेंट्री को लिखना चालू किया, और श्रीमद भागवतम की कमेंट्री के समय प्रभुपाद जी सन्यासी थे, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, तो बहुत कठिन कार्य था। पहले स्पॉन्सरशिप ढूंढना, फिर सबसे पहले लिखना, फिर स्पॉन्सरशिप ढूंढना, फिर प्रिंटिंग के लिए भेजना, प्रूफ रीडिंग करना, उसके बाद निकलना, फिर सेल करना, ये सब कुछ प्रभुपाद अकेले करते थे। आज तो हम देखते हैं बीबी टीम कितना बड़ा संस्था है, सभी लोग हर चीज के लिए अलग अलग टीम है, परंतु प्रभुपाद जी सब कुछ काम खुद ही किए। इन्हीं सेल में, दिल्ली में प्रभुपाद जी जब जाते थे तो सेल भी करते थे, दिल्ली में अलग अलग दुकानों में जाके सेल करते थे। कभी कोई व्यक्ति उनका अपमान करता था, कभी कोई ले भी लेता था। एक बार प्रभुपाद जी, इतनी ज्यादा गर्मी थी दिल्ली में कि उनको चक्कर आ गए और जमीन पे ही रोड पे गिर गए थे, तो उनको एक जानने वाले व्यक्ति ने देखा तो उनको घर पे लेके गए। एक बार प्रभुपाद जी को एक गाय बैल ने भी एक बार जोर से उनको धक्का दिया था। तो इस प्रकार से घटनाएं उनके लाइफ में हो रही थी। ये प्रभुपाद जी के जीवन का बहुत स्ट्रगल का समय था, बहुत संघर्ष का समय था। और उसी बीच प्रभुपाद जी को पता चला कि अमेरिका में वो जा सकते हैं कार्गो शिप के द्वारा, जिस शिप में सामान लेके जाया जाता है, उस शिप में बैठ के वो अमेरिका जा सकते हैं। उस समय उनकी उम्र ऑलरेडी 69 साल, 69 ईयर्स हो चुकी थी। प्रभुपाद ने सोचा कि अभी तो जिंदगी खत्म होने वाली है, ट्राई करना चाहिए, फाइनल ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम जाएंगे अमेरिका। अमेरिका जाने के लिए पी फॉर्म की जरूरत होती है, रिकमेंडेशन, इनविटेशन की जरूरत पड़ती है, उस सबको प्रभुपाद ने ढूंढना चालू किया। और इवेंचुअली उनको, उनके एक मित्र थे, उनके पुत्र न्यूयॉर्क के पास में पेनिसिल्वेनिया में रहते थे, गोपाल अग्रवाल। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बोल के बोला, गोपाल अग्रवाल के पास न्यूज पहुंचाई कि मुझे स्पॉन्सरशिप करें, स्पॉन्सरशिप मतलब मुझे इनवाइट करें, और स्पॉन्सरशिप के लिए वहां जाने का जो टिकट था उसको अरेंज करने के लिए प्रभुपाद जी मुंबई जाते हैं, सुमति मोरारजी के ऑफिस में। सुमति मोरारजी सिंडिया एस्टेट कंपनी की मालकिन रहती हैं, वहां पे प्रभुपाद जाते हैं। और जब ऑफिस में जाते हैं तो दोपहर का समय होता है, उनको कोई मोरा जी के जो नौकर रहते हैं वो प्रभुपाद जी को अलाउ नहीं करते अंदर आने के लिए, तो प्रभुपाद जी 5 घंटे तक वेट करते हैं सीढ़ियों पर बैठ के। और जब शाम को सुमति मोरा जी घर जाने के लिए आती हैं, तब प्रभुपाद जी उनको, जब वो देखते हैं प्रभुपाद जी को, तब वो उनको बुलाते हैं कि उनको ऑफिस में बुलाते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इस वृद्धावस्था में मैं जाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, और वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप तो इतने वृद्ध हैं, आप कैसे जा सकते हैं। और फाइनली फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि आप तो मेरी पुत्री के समान हैं, आप मुझे क्यों अलाउ नहीं करती हैं, आप अपने पिता को क्यों इस तरह से नहीं जाने देते हैं। तो फाइनली उन्होंने उनको मनाया, सुमति मोरारी जी को, और उनको टिकट मिला जाने का। तो अभी प्रभुपाद जी फाइनली, उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी कि वो इसलिए खुश थे कि कम से कम उनके गुरु ने उनको जो आदेश दिया है, तो वो आदेश पूरा करने के लिए अभी वो जा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद खुश थे। और वो चाहते थे कि अमेरिका जाने के पहले वो मायापुर जाएं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि पे जाके उनको, उनसे परमिशन लें, उनसे आशीर्वाद मांगें, और उसके बाद वो भारत छोड़ के विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जब प्रभुपाद जी मायापुर गए, चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीला स्थली पे गए, उसके बाद प्रभुपाद जी शांतिपुर गए अद्वैत आचार्य के घर में, क्योंकि अद्वैत आचार्य ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था, संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कराया था। तो प्रभुपाद अभी संकीर्तन आंदोलन भारत के बाहर वेस्ट में चालू करना चाहते थे, इसलिए वो अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शांतिपुर गए। और वो स्टोरी बाद में आती है कि प्रभुपाद जाते थे शांतिपुर कई बार, और घंटों घंटों तक, 8-8, 10-10 घंटे तक वहां पे जप करते थे, और वहां के जो पुजारी थे वो प्रभुपाद जी को पहचानते थे। और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत कठिन आदेश दिया है, मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा। बाद में जब इस्कॉन के भक्त उन पुजारी से मिलते हैं, तब तो वो पुजारी याद करते हैं कि वो अभय बाबू आते थे, उन्होंने ये करके दिखाया, जो उन्होंने उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था वो उन्होंने करके दिखाया। तो इस तरह से प्रभुपाद मायापुर गए, और फिर फाइनली कोलकाता से प्रभुपाद जी शिप, कार्गो शिप को उन्होंने ज्वाइन किया। और जब वो गए थे तो उनके साथ 2-3 लोग थे, उनके बेटे वृंदावन थे, एक दो लोग और थे प्रभुपाद की जान पहचान वाले, वो उनको साथ में छोड़ने के लिए गए। तो कोलकाता से प्रभुपाद जी बैठे, और उनकी बुक्स जो थी वो बाद में कुछ बुक्स मुंबई और कोचीन से लोड होनी थी। तो इस तरह से अगले दिन मुंबई पहुंचता है जहाज, फिर अरेबियन कोचीन होते हुए अरेबियन सागर से होते हुए निकल जाता है। और अरेबियन सागर जब पार करते हैं, फिर कैनाल पार होती है, तो जैसे जैसे पैसिफिक ओशन चालू होता है, प्रभुपाद जी बहुत, उनका हेल्थ बहुत डाउन होना चालू हो जाता है। प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, जल्दू डायरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार उनको चक्कर आते रहते हैं, उल्टी की इच्छा होती रहती है, उल्टियां भी होती थी प्रभुपाद को शिप में, पानी में, और इतना ज्यादा एटमोसफियर वहां पे था, पानी बहुत ज्यादा उग्र तरीके का था। तो इसी बीच में प्रभुपाद जी जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी में शिप पे मनाया था, और उस बीच में प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक भी आता है। प्रभुपाद खुद लिखते हैं जल्दू डायरी में कि अगर तीसरी बार अटैक आ जाता तो मैं शायद जीवित नहीं बचता, पर भगवान मुझे बचा लिया। जब दूसरी बार हार्ट अटैक आता है, उस समय प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं, और तब भगवान उनको, उनके सामने आके उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि अभी अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी, अभी आप जाइए, और मैंने सब कुछ वहां पे प्रबंध करके रखा है, आप बस जाइए, कृष्ण की भक्ति के बारे में बोलिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। इस तरह से जब प्रभुपाद को सपना आता है, उसके बाद प्रभुपाद का हेल्थ भी ठीक हो जाता है, और उसके बाद फिर उस सपने के बाद प्रभुपाद देखते हैं अगले दिन से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण ने उस शिप का चार्ज ले लिया है। इस प्रकार से प्रभुपाद फील करते हैं, क्योंकि समुद्र भी एकदम शांत हो जाता है। इवन कैप्टन पंड्या, जो कि उस शिप के कैप्टन होते हैं, वो प्रभुपाद से बोलते हैं कि स्वामी जी, आज तक मैंने कभी भी पैसिफिक ओशन को इतना शांत नहीं देखा। और इस तरह से प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं जल्दू डायरी में कि मैं अभी अपने भारत देश से बहुत दूर आ चुका हूँ, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, और अभी केवल मेरे लिए एक ही शांति है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मेरे पास है, जिसमें मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहा, पढ़ रहा हूँ और स्मरण कर रहा। तो इस तरह से प्रभुपाद चलते चलते 35 दिन में, 13 अगस्त को ये शिप स्टार्ट हुई थी, और 35वें दिन वो शिप पहुंचती है बॉस्टन, 17 सितंबर 1965 को ये शिप बॉस्टन पहुंचती है। और चूंकि 1 महीने से ज्यादा प्रभुपाद शिप के ऊपर थे, इसलिए जब बॉस्टन आते हैं तो कैप्टन पंड्या और उनकी वाइफ प्रभुपाद जी को लेके जाते हैं बॉस्टन घुमाने के लिए। तब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका को देखते हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका के बारे में सुना था न्यूज में और अलग अलग चीजों में, परंतु आज पहली बार अमेरिका को देखा था। तो जब वापस आते हैं, तब प्रभुपाद देखते हैं कि अमेरिका की जनसंख्या तो पूरी रजोगुण तमोगुण में है, और प्रभुपाद को तब पता चलता है कि कैसे मैं प्रचार करूंगा, कैसे मैं भगवद गीता और भागवत का प्रचार करूंगा इन लोगों को, इनका तो कोई रुचि नहीं है। तब प्रभुपाद ये पोयम लिखते हैं, मार्किने भागवत धर्म। उस पोयम में भगवान भगवान से प्रार्थना करते हैं वो कि भगवान, आप मुझे यहाँ लेके आए हैं तो आप मुझे जैसे नचाना चाहें वैसे मुझे नचाइए। बहुत अच्छी पोयम है वो, मार्किने भागवत धर्म पोयम, बहुत अच्छी पोयम। और 17 सितंबर के बाद 19 सितंबर को वो सिर्फ न्यूयॉर्क पहुंचती है। प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा था तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे दाईं तरफ मुड़ना है कि बाईं तरफ मुड़ना है, किसी को नहीं जानते थे वो। उन्होंने गोपाल अग्रवाल को एक लेटर भेजा था कि मैं पहुंचने वाला हूँ इस शिप से, इस समय पहुंच जाऊंगा, परंतु उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया था। प्रभुपाद जाने की इतने जल्दबाजी में थे कि उस लेटर का रिप्लाई की इंतजार किए बिना ही प्रभुपाद चले गए थे। तो प्रभुपाद को पता नहीं था कि न्यूयॉर्क में उनको मिलने के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा, पर फॉर्चुनेटली गोपाल अग्रवाल ने अपने ड्राइवर को वहां पर भेजा था हाँ प्रभुपाद जी को लेने के लिए। तो प्रभुपाद जब जाते हैं, उनका ड्राइवर उनको मिलता है और प्रभुपाद को न्यूयॉर्क के पास में बटलर पेनिसिल्वेनिया में लेके आते हैं। वहां पे इनका घर होता है गोपाल अग्रवाल। तो इनिशियली प्रभुपाद जी वहां पे उनके घर में रहते हैं। गोपाल और सैली अग्रवाल दोनों पति पत्नी होते हैं। सैली अग्रवाल क्रिश्चियन है, अमेरिकन थे, उनके घर पे प्रभुपाद रुकते हैं। कुछ समय बाद YMCA में प्रभुपाद रुकते थे, वो इनके घर पे आके प्रसाद लेते थे। तो जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कितना ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है भारत और अमेरिका के बीच में। एक तरफ प्रभुपाद वृंदावन के सबसे पवित्र माहौल में थे, खुद भी सन्यासी थे, कल्चरली इतने ज्यादा एलिवेटेड थे, और दूसरी तरफ ये लोग जो थे ये मांस खाने वाले, सैली अग्रवाल जो थे वो प्रभुपाद के सामने सिगरेट पीते थे। जब गोपाल अग्रवाल ने उनको मना किया कि नहीं वो हमारे पिताजी की उम्र के हैं, तो सैली अग्रवाल ने बोला कि नहीं उनको कोई अधिकार नहीं मेरी स्वतंत्रता को छीनने का, मैं तो जब भी चाहूँ। वैसे सैली अग्रवाल ने आंसर दिया। तो बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस था। प्रभुपाद जी तो कभी मांस को देखते भी नहीं थे, इन लोगों के फ्रिज में मांस रखा रहता था। प्रभुपाद जी अपनी सब्जियां उसी फ्रिज में रखते थे, उसी फ्रिज में मांस भी रहता। कितना ज्यादा प्रभुपाद जी ने सहन किया उस समय, और धीरे धीरे प्रभुपाद के गुणों के कारण, जो कि शुद्ध भक्त थे वो, इसलिए उनके गुणों के कारण गोपाल और सैली अग्रवाल उनको पसंद करने लगे। और ऐसे रहते रहते प्रभुपाद जी को 1 महीना हो गया पेनिसिल्वेनिया में। वो ढूंढ रहे थे कैसे कैसे प्रचार करें, वो देख रहे थे अमेरिका कैसा है। तो प्रभुपाद समझ गए कि अमेरिका में रुका जा सकता है, पर साथ ही साथ प्रभुपाद को लग रहा था कि पेनिसिल्वेनिया, बटलर, ये बहुत छोटी जगह है, अगर उनको प्रचार करना है तो उनको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो वो ढूंढ रहे थे न्यूयॉर्क में कॉन्टेक्ट, और साथ साथ प्रभुपाद जी गोपाल और सैली अग्रवाल को खुद ही भोजन खिलाते थे, जिससे कि उनका मीट ईटिंग बंद हो जाए। तो प्रभुपाद खुद भोजन बनाते थे सबके लिए और सबको खिलाते थे, दोनों टाइम गोपाल और सैली अग्रवाल को खुद खिलाते थे। इस तरह से रहते रहते 1 महीने के बाद उनको एक कांटेक्ट मिला, डॉक्टर मिश्रा का कांटेक्ट मिला न्यूयॉर्क में, जो कि न्यूयॉर्क में अपटाउन में रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी हमें न्यूयॉर्क जाना चाहिए, बटलर में रहने से मेरा काम पूरा नहीं होगा। उस समय सैली अग्रवाल बताती हैं कि तब हमें बहुत दुख हुआ जब प्रभुपाद जी जाने वाले थे, तब मुझे लगा कि शायद हमारी फैमिली के कोई व्यक्ति जा रहे हैं छोड़। दैट मीन्स प्रभुपाद जी के गुणों से वो इतनी आकर्षित हो गई थी। वो बोलती हैं प्रभुपाद जी से कि वहां पे आपको कोई नहीं जानता, आप यहीं रहिए, आप क्यों वहां जा रहे हैं, आप हमारे पिता के समान हैं। पर प्रभुपाद का विचार था कृष्ण भक्ति का प्रचार का, तो वो किसी एक जगह पे नहीं रुक सकते थे, न्यूयॉर्क जाना उनका लक्ष्य था। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं और फिर न्यूयॉर्क में डॉक्टर मिश्रा के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे एक दूसरी समस्या आती है। डॉक्टर मिश्रा एक मायावादी थे, शंकराचार्य के फॉलोअर थे, तो वो निराकारवाद की शिक्षाएं देते थे और प्रभुपाद जी को निराकारवाद पसंद नहीं आता था। तो जब भी वो कुछ बोलते थे प्रभुपाद जी उसको काटते थे। कल्चरल द फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बहुत सारे थे। और डॉक्टर मिश्रा के स्टूडेंट आते थे उनसे योगा सीखने के लिए, प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो उनके शिष्य जब प्रभुपाद जी से ज्यादा आकर्षित होने लगे, तब डॉक्टर मिश्रा को ये बात अच्छी नहीं लगी। और प्रभुपाद जी उनको भी खुद भोजन कर खिलाते थे, खुद कुकिंग करते थे और डॉक्टर मिश्रा को भी खिलाते थे। कभी उन दोनों के बीच में फाइट नहीं हुआ, पर प्रभुपाद जी उनकी फिलोसॉफिकल बातों को नहीं स्वीकार करते थे। और जब उनके शिष्य प्रभुपाद की तरफ आकर्षित होने लगे, तब डॉक्टर मिश्रा ने प्रभुपाद से बोला कि आपको कोई दूसरी जगह खोज लेनी चाहिए, इस प्रकार से उनसे बोला। और प्रभुपाद भी समझ रहे थे कि उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मायावादी व्यक्ति हैं और उनके अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। तो उनके शिष्यों में से ही एक शिष्य डेविड थे और माइकल थे, उनसे प्रभुपाद जी मिले और उन लोगों ने प्रभुपाद जी को अरेंज किया। प्रभुपाद जी माइकल के पास आते हैं कि मैं अभी मेरा अरेंज करो। तो उस समय जो माइकल थे उनको तो डेविड के घर पे रोकते हैं, और डेविड पहले तो प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करते हैं, पर धीरे धीरे फिर डेविड फिर से पाप के कामों में लग जाता है। एक रात ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी को अटैक करता है, प्रभुपाद अटैक करता है, और प्रभुपाद समझ जाते हैं कि अभी उनको डेविड के साथ नहीं रह सकते हैं। तो आधी रात में प्रभुपाद तो बाहर निकलते हैं, और उस समय प्रभुपाद बताते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या कैसी अवस्था आ चुकी है, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। और प्रभुपाद सोच रहे थे, देखो ये समय है, मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है, रोड पे रहने का ऑप्शन था प्रभुपाद को, क्योंकि और किसी को नहीं जानते थे। परंतु उसी समय उनको याद आया माइकल का, माइकल जो कि मुकुंद महाराज है, उनका याद आया। प्रभुपाद जी ने उनको कॉल किया और तुरंत मुकुंद महाराज ने उनको बुलाया अपने घर पे। वहां पे मुकुंद महाराज अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बिल्ली के साथ रहते थे। प्रभुपाद जी जब वहां पे गए, उनको अच्छा नहीं लगा ये सब देख के, परंतु चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वहां पे रुके। और फिर मुकुंद महाराज ने पहली बार रेंट लेके प्रभुपाद जी के लिए एक स्टोर फ्रंट किराए से लिया। उस स्टोर फ्रंट वहां पे एक गिफ्ट शॉप थी, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट, वो रेंट पे उन्होंने लिया। और साथ साथ उसी स्टोर फ्रंट के पीछे एक और कमरा लिया जहाँ पे प्रभुपाद जी रुकते थे। ये पहला पहला कार्य जो कि उन्होंने किया प्रभुपाद जी के लिए। और जब स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद आए, उसके बाद उन्होंने रेगुलर रेगुलर प्रोग्राम चालू किए। हफ्ते में 3 दिन भगवद गीता क्लास, सोमवार मंगलवार बुध सोमवार बुधवार शुक्रवार, और साथ में टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने के लिए प्रभुपाद जाते थे। तो पहली बार जब कीर्तन करने के लिए गए तो प्रभुपाद ने जस्ट कीर्तन चालू किया तरताल से, और कुछ कुछ हिप्पी लोग जो थे नशे में थे वो आकर्षित हुए। अभी भी हम देख सकते हैं वो सब कीर्तन जिसमें प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, हिप्पी लोग, कोई हिप्पी अपना अपनी चप्पल बजा रहा है, कोई अलग अलग चीजें बजा रहा है। तो ये सब उस समय प्रभुपाद ने कीर्तन 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा किया। उसके बाद जब प्रभुपाद वापस लौट रहे थे तो कुछ हिप्पी उनके साथ में आए, तो जो आए उनको भगवद गीता सुनाया और उनको कुछ कुछ प्रसाद दिया, एप्पल काट के प्रभुपाद जी प्रसाद के जैसे देते थे। और इवेंचुअली जब मॉर्निंग में प्रभुपाद ने क्लासेस चालू किया, प्रभुपाद ने क्या किया, कुछ लोगों को रोकते थे, कुछ लोगों को वहां पे रोकते थे, स्टोर फ्रंट में लोग रुकना चालू हो गए थे, और उनके लिए मॉर्निंग में क्लास होती थी, कीर्तन होता था और क्लास होती थी। तो मॉर्निंग की क्लासेस बहुत इंटेंस होती थी, प्रभुपाद जी उनको अच्छे से सिखाते थे सारी वस्तुएं। और उस समय के बहुत सारे अनेक एनेक्डोट्स प्रभुपाद लीलामृत में आते हैं, अलग अलग भक्तों के अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं। जैसे एक बार उसमें से कुछ लोग सिंसियर भी बने, वो सोचते थे कि वो स्पेशल है, वो खुद ही भगवान है। तो नशे में ऐसा सोचते थे, क्योंकि उस समय ज्यादातर हिंदू रिलीजन के मतलब मायावादी सिखा मायावाद सिखाया जाता था, तो ज्यादातर लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो भगवान है। तो जदु रानी माता जी वास्तविकता में रहती 2 घंटे दूर थी, परंतु प्रभुपाद ने एक बार उनसे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो तो यही सोचते थे कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं तो हर जगह निवास करती हूँ, आई एम एवरीवेयर। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा, तो फिर मेरी भगवद गीता क्लास में हर दिन सुबह आ जाएगा। तभी उनको समझ में आया कि 2 घंटे दूर रहती है, और सुबह 6 बजे क्लास होती थी तो सुबह 4 बजे उनको निकलना पड़ेगा। तो जदु रानी माता जी ने एक्सेप्ट किया और वो सुबह 4 बजे अपने घर से निकल के प्रभुपाद जी की क्लास के लिए आने लगी। सुबह 6 बजे आती थी, ऐसे आते आते अपने आप वो सिंसियर हो गई। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जब मैं जप करती हूँ तो मेरे माथे के ऊपर, माथे के बीच में मुझे लाइट दिखाई देती है। उन्होंने शायद इसलिए पूछा कि प्रभुपाद बताएंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत एडवांस हो, पर प्रभुपाद ने बोला तुम चैंटिंग करते रहो, वो लाइट गायब हो जाएगी। इस तरह से बोल के प्रभुपाद ने उनकी बात को काट दिया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है अलग अलग भक्तों के। कुछ कुछ लोग उसमें आने लगे रेगुलरली, एक तो जदु रानी माता जी, इसके साथ माइकल और जेन, तो जेन कीथ कीथ जो है बाद में कीर्तनानंद महाराज बने, ये कुछ कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड। और फिर 8 लोगों को सिलेक्ट करके प्रभुपाद जी ने सोचा कि दीक्षा देंगे। अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था प्रभुपाद को आए हुए। 1965 में आए थे, 1966 में जुलाई में इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने। इस्कॉन की स्थापना के समय भी 7-8 लोग ही थे टोटल उस हॉल में, छोटे से कमरे में। और वो स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी ने जब कृष्णा कॉन्सियसनेस नाम दिया तो लोगों ने बोला कि ये तो गॉड कॉन्सियसनेस देना चाहिए, कृष्ण को कोई नहीं पहचानता। तब प्रभुपाद ने बोला कि हम लोगों को कृष्ण के बारे में बताएंगे। और 7-8 लोगों के अंदर प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, उसके 7 उद्देश्यों को लिखा। इस प्रकार से लिखा जैसे ये संस्था डेस्टाइंड है कि पूरे संसार में फैलने वाली। उस समय के लोग, उस समय जो जो बैठे थे वो सब कोई सीरियस फॉलोअर नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो सब प्रभुपाद के शिष्य थे, परंतु उन पर विश्वास करके प्रभुपाद ने इस संस्था को प्रारंभ किया। और जब पहली बार दीक्षा हो रही थी, ये दीक्षा प्रभुपाद ने अगस्त में इस्कॉन बनने के 1 महीने बाद लगभग दीक्षा का आयोजन किया, पहली दीक्षा का। तो दीक्षा के दिन प्रभुपाद ने बोला कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो भगवान के समान होता है। तो अभी तक उनके शिष्य सुनते आ रहे थे कि कोई भगवान नहीं बन सकता है, 1 साल से सुन रहे थे वो लोग। अभी एकाएक दीक्षा के दिन प्रभुपाद ने इस प्रकार से बोला तो सबके सब कंफ्यूज हो गए। उनमें से एक शिष्य है वॉल, वो बोलते हैं ये स्वामी जी ने क्या बम बम ड्रॉप कर दिए। इस प्रकार से अभी तक तो कुछ बोला नहीं, पहले बोलते थे कि वन हु सेज ही इज गॉड ही इज डॉग, और अभी ये बोल रहे हैं कि गुरु को भगवान मानना चाहिए। तो वो सोचने लगे कि इनसे दीक्षा लें कि नहीं लें। सबसे सीनियर व्यक्ति के पास जाते हैं, वो कीर्तन आनंद के पास, और कीर्तन आनंद बताते हैं कि मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं है, चलो चल के स्वामी जी से पूछते हैं। तो सबके सब स्वामी जी के पास जाते हैं, और स्वामी जी से जब पूछते हैं तो प्रभुपाद पे बताते हैं कि ऐसा नहीं कि गुरु भगवान है, भगवान तो केवल कृष्ण है, परंतु गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो भगवान का प्रिय प्रतिनिधि है, नहीं तो कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने समझाया। तो पहली बार दीक्षा हुई। दीक्षा के दूसरे दिन प्रभुपाद ने 4 नियमों को नोटिस पे लगा दिया कि जिन जिनकी दीक्षा हुई है उनको 16 माला का जप करना पड़ेगा और इन 4 नियमों को पालन करना पड़ेगा। तब तक ये लोग दीक्षा ले चुके थे तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो सब प्रारंभ किए 4 नियमों को पालन करना, 16 माला का जप करना। दीक्षा के दूसरे दिन जब मुकुंद और जानकी प्रभुपाद के पास आते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं उनसे कि बिना शादी किए इस प्रकार से रहना अच्छा नहीं है, तो आप दोनों को शादी करना चाहिए। प्रभुपाद फिर दोनों की खुद ही पर्सनली मैरिज अरेंज करते हैं। इस्कॉन संस्था का पहला मैरिज, इस्कॉन संस्था की पहली मैरिज थी जो प्रभुपाद जी ने अरेंज की थी, मुकुंद और जानकी की शादी प्रभुपाद ने अरेंज की। और जानकी की सिस्टर जो थी उनका नाम था जोन, जो कि ओरेगोन में रहती थी। प्रभुपाद ने जानकी से बोला कि अपने घर वालों से किसी को बुलाइए, आपकी शादी है। तो जोन को बुलाया गया। तो प्रभुपाद ने जोन से बोला देखो तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम्हें कुकिंग करना है, जो बारात आएगी उसका तुम्हें कुकिंग करना है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो जोन को तो कुछ आता नहीं था, प्रभुपाद ने उनको पहले आटा सानना सिखाया, कचौड़ी बनाना सिखाया। बीच बीच में जोन को सिगरेट पीने की इच्छा होती थी, प्रभुपाद बोलते थे ठीक है जाके पी के आओ, पर सिगरेट पीने के बाद हाथ धोना, हाथ धो के वापस आना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी और जोन ने मिलके यमुना माता जी, जोन जो है बाद में यमुना माता जी बनी, जिन्होंने गोविंद मादि पुरुषम सॉन्ग गाया है, उनका नाम पहले जोन था। तो वो बताती हैं कि एक्चुअली मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, जितनी देर मैंने आटा साना और कचौड़ी का वो लगाया उतनी देर में तो प्रभुपाद ने 15 आइटम बना दिए, 15 आइटम की फीस्ट बनाई। तो करीब 100-200 लोगों के हिसाब से प्रभुपाद जी ने प्रसाद बनाया और इन दोनों की मैरिज हुई। और यज्ञ के समय इतना ज्यादा धुआं निकला कि ऊपर के फ्लोर से कंप्लेन आने लगी कि आग लग गई, आग लग गई। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया था, फायर ब्रिगेड को बुलाया लिया था कि शायद बिल्डिंग में आग लग गई। तो बाद में जब सबको पता चला कि कोई भारत से कोई साधु आया, उन्होंने यज्ञ किया, तो सब समझे कि क्या हुआ। और इस प्रकार से कुछ कुछ और प्रभुपाद जी को के साथ ही मिले, गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद, ये दोनों भाई प्रभुपाद जी को मिलते हैं इवेंचुअली। और तो इस प्रकार से न्यूयॉर्क में पहले मंदिर की स्थापना होती है। तो गीता क्लासेस और नगर संकीर्तन ये चलता रहता है। उसी समय मुकुंद महाराज और जानकी ये दोनों वेस्ट कोस्ट में जाते हैं, वेस्ट कोस्ट मतलब सैन फ्रांसिस्को सिटी में जाना जाते हैं, और प्रभुपाद उनसे बोलते हैं कि वहां जाके प्रयास करो अगर सेंटर की स्थापना हो सके तो। ये दोनों जाते हैं वहां पे, और जाके इनके और दो मित्र होते हैं, दो कपल मित्र होते हैं, जैसे मुकुंद जानकी हैं उसी तरह से गुरुदास और यमुना, और श्याम सुंदर और मालती, ये 6 लोग हैं, 3 कपल, 3 गृहस्थ कपल, तीनों मित्र थे, पहले से ही मित्र थे। तो ये लोग सैन फ्रांसिस्को जाके बाकी दोनों कपल से मिलते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, धीरे धीरे इनकी सिंसियरिटी को देख के वो लोग भी कन्विंस होते हैं। उसके बाद वो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, एवलॉन बाल रूम में एक मंत्रा रॉक डांस ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे लोग, हजारों लोग आते हैं उसमें, हजारों हिप्पी आते हैं। उस समय एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को हिट हिट स्पेस था, हिट प्लेस था हिप्पी के रहने के लिए, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा हिट था। तो ये लोग मंत्रा रॉक डांस अरेंज करते हैं, उसमें कुछ कुछ फेमस रॉक प्लेयर आते हैं, और प्रभुपाद और एलन गिन्सबर्ग को भी आयोजित इनवाइट करते हैं ये लोग। और जब प्रभुपाद को इनविटेशन मिलता है, वो लोग साथ में प्रभुपाद जी के लिए एयर टिकट भी भेजते हैं। तो प्रभुपाद जब आते हैं वहां पे, साथ साथ न्यूयॉर्क के एक भक्त होते हैं रणछोड़ प्रभु, और वो अपने पैसे से प्रभुपाद के साथ ट्रेवल करना चाहते थे, तो अपना टिकट करा के प्रभुपाद के साथ आते हैं। प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को आते हैं, तो प्रभुपाद देखते हैं कि उनके सैन फ्रांसिस्को आने के पहले 50 लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तब वो बोलते हैं मुकुंद और जानकी कितने शुद्ध हैं कि कुछ ही महीने में उन्होंने इतने सारे लोगों को प्रचार किया और इतने लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। और प्रभुपाद की ये पहली हवाई यात्रा थी, तो प्रभुपाद बताते हैं कि इतनी ऊंचाई से सब बिल्डिंग एकदम छोटी छोटी माचिस माचिस के डिब्बे जैसे लग रहे थे। प्रभुपाद पहली बार ऊपर बादलों के ऊपर से, मतलब एरोप्लेन से पहली यात्रा थी, उसका एक्सपीरियंस प्रभुपाद बताते हैं। साथ साथ प्रभुपाद न्यूयॉर्क से आते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेके आते हैं, जितने भी वहां पे भक्त रहते हैं सबके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। और बहुत सारे लंबे इंसिडेंट है एक्चुअली इस अवस्था में, सैन फ्रांसिस्को में जब थे, तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि 2 घंटे में कवर करना इम्पॉसिबल है। कई घटनाएं हैं, प्रभुपाद का एसोसिएशन उन भक्तों को किस प्रकार से मिलता है, वो लोग भक्त अलग अलग प्रश्नोत्तर करते हैं, वो इवेंचुअली एक क्लास में होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी घटनाएं कवर करना मुश्किल है। करीब 7 बुक इस प्रकार से लिखी गई है प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर, और उसके अलावा 20-25 और बुक्स हैं जो प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के ऊपर लिखी है। तो अगर उन पुस्तकों को हम कवर करेंगे, तो हर पुस्तक इस प्रकार से 6-6 7-7 घंटे तक पढ़ी जा सकती है। तो हम जस्ट कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और एवलॉन बालरूम में जो प्रोग्राम हुआ, उसमें प्रभुपाद बहुत खुश थे। जब प्रभुपाद को बुलाया गया, तो चारों तरफ तो नशे में हिप्पी लोग थे। एलन गिन्सबर्ग ने प्रभुपाद का स्वागत किया, और उसके बाद प्रभुपाद ने जब कीर्तन किया, तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक प्रभुपाद ने कीर्तन किया। और प्रभुपाद बहुत खुश थे उन लोगों को देख के कि इतने सारे हिप्पी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे हैं, ये देख के प्रभुपाद बहुत खुश थे। साथ ही साथ जब प्रभुपाद वापस जा रहे थे वहां से, तो प्रभुपाद ने बोला था कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर ब्रह्मचारी। वहां का माहौल इतना तमोगुण का था, प्रभुपाद थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, परंतु प्रभुपाद ये खुश थे कि कम से कम इन लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र इतने समय तक सुना, और 1 घंटे तक प्रभुपाद ने कीर्तन किया। इसके बाद प्रभुपाद ने सोचा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्त अभी सिंसियर हो रहे हैं, तो उनको दीक्षा देना चाहिए। तो कुछ और भक्तों को उन्होंने सिलेक्ट किया, 6 भक्त या 8 भक्तों को सिलेक्ट किया उनको दीक्षा देने के लिए। दीक्षा के समय ये प्रश्न आया कि कौन सा घी यूज करेंगे, तो घी तो उन लोगों के पास कोई पैसे तो थे नहीं, अभी अभी हिप्पी खानदान से निकले हुए थे, तो उनके पास कोई पैसे तो थे नहीं। और जब उन्होंने सोचा कि घी कहाँ से मिलेगा, तो जैक ग्रीन की फैक्ट्री में जाते हैं और कुछ यूज्ड हुआ जो खराब हो जाता है वो लेके आते हैं, उसको यज्ञ में यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। जब प्रभुपाद उनको झुकने के लिए बोलते हैं, बाउ डाउन, तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्योंकि प्रभुपाद का इंग्लिश एक्सेंट उनको क्लियर नहीं होता है। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। और उसके बाद मालती माता जी को एक बार एक विग्रह मिलते हैं, छोटे से विग्रह, जगन्नाथ जगन्नाथ के विग्रह मिलते हैं, और उनको पता नहीं रहता है कि ये कौन से विग्रह हैं, परंतु वो लेके आते हैं प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद जब वो वहां पर रख देती हैं विग्रह, और प्रभुपाद जैसे कमरे के अंदर आते हैं, जब वो जगन्नाथ को देखते हैं तो तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। और मालती माता जी जब देखती हैं प्रभुपाद दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो वो पूछती हैं क्या है। तब प्रभुपाद बताते हैं ये तो भगवान जगन्नाथ हैं, और भगवान जगन्नाथ के आने से मुझे पता चला कि वो भगवान जगन्नाथ मेरे पीछे पीछे भारत से अमेरिका आ गए। और फिर प्रभुपाद पूछते हैं इसके अलावा भी आपको कुछ और विग्रह थे क्या वहां पे। तब मालती माता जी बताती हैं हाँ दो और विग्रह थे वैसे। तो वो बोलते हैं उनको भी लेके आओ, इनके पास पैसे नहीं होते हैं। पहला विग्रह भी वो चोरी करके ही लाते हैं, बाकी विग्रह दोनों विग्रह भी चोरी करके फिर लेके आते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद फिर उनके जो बॉयफ्रेंड श्याम सुंदर प्रभु होते हैं उनसे बोलते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु उस समय दीक्षित नहीं होते, उनका नाम सैम होता है, तो उनसे बोलते हैं कि आप इनके जगन्नाथ जी का विग्रह बनाइए। जगन्नाथ जी का विग्रह उस मतलब जिस प्रकार के छोटे विग्रह थे उसी तरीके के बड़े विग्रह बनाने के लिए प्रभुपाद उनसे बोलते हैं। और एक बार जब वो विग्रह बनाते रहते हैं तो प्रभुपाद पहुंच जाते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। तब देखते हैं प्रभुपाद कि वो सिगरेट, अपनी सिगरेट जगन्नाथ जी के ऊपर रखे हुए हैं। तो प्रभुपाद उस सिगरेट को देखते हैं, डांटते नहीं है, परंतु वो बोलते हैं कि आपके और भगवान कृष्ण के बीच में ये सिगरेट को क्यों आने दे रहे हो, इस तरह से प्रभुपाद उनसे बोलते हैं। उसके बाद से श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि उनका सिगरेट बंद हो गया अपने आप। और फिर जगन्नाथ जी की स्थापना होती है, जगन्नाथ मंदिर प्रभुपाद जगन्नाथ की स्थापना करते हैं। और सैन फ्रांसिस्को के लोगों से बोलते हैं कि जब भी कोई जगन्नाथ के दर्शन करने आता है तो कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए। तो फिर वहां के लोग फूल लेके आते हैं, कोई चावल ग्रेन लेके के जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, जगन्नाथ जी को इंस्टॉल करते हैं। उसके अगले दिन जब प्रभुपाद देखते हैं तो जगन्नाथ जी वहां पे नहीं रहते हैं। तो प्रभुपाद को समझ में नहीं आता कहाँ जगन्नाथ जी गायब हो गए। तो जब वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो देखते हैं कि उनके भक्त लोग जगन्नाथ जी को बीच पे लेके गए। और वो लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी को हमने सोचा कि बाहर घुमाने ले चलना चाहिए। उस समय तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते, फिर बाद में आने के बाद बोलते हैं इस तरह से भगवान को बाहर नहीं ले जाया जाता, भगवान को जब बाहर ले जाते हैं तो रथ यात्रा में लेके जाते हैं। तब प्रभुपाद ने सोचा कि जगन्नाथ जी को बाहर जाने की इच्छा है तो उनके लिए रथ यात्रा करनी चाहिए, और रथ यात्रा का प्लान करते हैं। उस समय जयानंद प्रभु भी वहां पे उपस्थित रहते हैं, जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर भक्त हैं। तो उनके द्वारा प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी नाम देते हैं, सैन फ्रांसिस्को सिटी को, मंदिर को न्यू जगन्नाथपुरी नाम देते हैं। और रथ यात्रा के लिए एक ट्रक लेते हैं, उस ट्रक को पीछे से फ्लैट पीछे वाले हिस्से में रथ के पंडाल के जैसे बना के उसमें जगन्नाथ रथ यात्रा की जाती है। तो जगन्नाथ जी को इंस्टॉल करने और जगन्नाथ रथ यात्रा के बीच में प्रभुपाद को एक बार हार्ट अटैक आता है, तीसरा हार्ट अटैक आता है फिर से। और प्रभुपाद चूंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं प्रचार के लिए उस समय, तो उनको हार्ट अटैक आता है। कीर्तनानंद महाराज प्रभुपाद के साथ में रहते हैं उस समय। तो प्रभुपाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो प्रभुपाद की जैसे ही थोड़ी हेल्थ ठीक होती है प्रभुपाद बोलते हैं मैं हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से लेके जाओ। तो उनके शिष्य उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल से लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगर इसको यहाँ से ले गए तो ये मर जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं डॉक्टर की कुछ मत सुनो, मुझे लेके जाओ यहाँ से। उनके शिष्य प्रभुपाद को भगा के लेके जाते हैं, स्ट्रेचर पे लिटा के लेके जाते हैं, लिफ्ट में से बिठा के फिर गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। और प्रभुपाद वहां जाके नेचुरली रेस्ट करके आयुर्वेदिक तरीके से प्रभुपाद रेस्ट करते हैं। तो उनकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी होती है, परंतु बहुत वीक होते हैं। और तो उस समय उनके शिष्य उनको समुद्र के पास में एक बीच होता है, उस बीच में प्रभुपाद के लिए एक बंगला ढूंढते हैं और वहां पे प्रभुपाद को विश्राम करने के लिए बोलते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है तो प्रभुपाद रथ यात्रा में नहीं आ पाते हैं अपनी बीमारी के कारण, परंतु रथ यात्रा खत्म होने के बाद जगन्नाथ जी को एक हफ्ते के लिए वहां पे प्रभुपाद जी जहाँ पे रहते हैं वहां पे ले जाया जाता है। तो उस समय प्रभुपाद बहुत बीमार थे और प्रभुपाद ऑलरेडी बोल चुके थे कि मैं भारत जाना चाहता हूँ और भारत में जाके मैं इलाज करना चाहता हूँ। उस समय उनके शिष्य श्योर नहीं थे कि प्रभुपाद अगर भारत जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, और इस कारण से उनको बहुत दुख हो रहा था कि उनके गुरु मिले और कुछ कुछ ही महीनों में उनके गुरु जाने वाले हैं, फिर पता नहीं वो उनको देख भी पाएंगे कि नहीं। ऑलरेडी प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था तो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में सारे भक्त रात रात भर कीर्तन और चैंटिंग कर रहे थे प्रभुपाद के लिए। तो सभी जब सबको पता चला कि प्रभुपाद भारत जाना चाहते हैं तो सबको लगा कि शायद प्रभुपाद जी अब वापस नहीं आएंगे। तो एक भक्त जो थे, नए भक्त थे, उनको कुछ इतना सा कुछ इतने एटिकेट नहीं आते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी से एक ऑफेंसिव प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी अगर आप नहीं आएंगे तो क्या हम लोग वृंदावन से आप लोग आपके कोई गॉड ब्रदर को लेके आके उनको अपना गुरु बना ले और उनसे सीखने लगे? ये अपने आप में ऑफेंसिव प्रश्न है। एक गुरु से पूछना कि हम किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेके उसको अपना गुरु बना ले, इस प्रकार का अपराध का प्रश्न है। प्रभुपाद जी जानते थे कि उनके शिष्यों को कोई नॉलेज है ही नहीं, तो प्रभुपाद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। परंतु प्रभुपाद जब वो ये प्रश्न आया तो प्रभुपाद आंखें बंद करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सोचने लगे। और जब उन्होंने उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर वैकुंठ से आए हुए थे, ही वॉज अ वैकुंठ मैन, इस तरह से बोल के प्रभुपाद रोने लगे। और ये शिष्य भी समझ गए कि उनका जो प्रश्न था वो बहुत गलत था, क्योंकि वो दीक्षा गुरु और शिष्य के संबंध को केवल ऐसा समझ रहे थे कि वो शरीर से आधारित है। वो बोल रहे थे कि किसी से भी हम दीक्षा ले सकते, किसी से भी कभी भी हम गुरु बदल सकते हैं, कोई एक गुरु नहीं तो दूसरे को बदल के उससे दीक्षा लेके उससे सीख सकते हैं। तो शिष्य समझ गए कि शिष्य गुरु का संबंध जन्मों जन्मों का संबंध होता है, एटर्नल संबंध होता है वास्तविकता में। उसके बाद जब प्रभुपाद जाने वाले थे, भारत आने वाले थे, तो सैन फ्रांसिस्को मंदिर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक बड़ी सी फोटो थी, लाइफ साइज फोटो उन्होंने लगाई थी। उस फोटो के सामने जाके प्रभुपाद एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं कि ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, अभी आपने जो मुझे मिशन दिया था वो मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो कृपा करके अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मिशन को पूरा कर सकूं, अन्यथा आपको जो भी मुझसे कराना है आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से कि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने जो मुझे आज्ञा दी थी वो अभी पूरी नहीं हुई है, मैंने तो अभी अभी प्रचार चालू किया है, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद ने प्रार्थना की। और प्रभुपाद ने तब भी बोला कि अगर आपकी इच्छा है तो आप जो करें स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद ने लंबे समय तक प्रणाम किया। और जब प्रभुपाद वहां पे बैठे थे कुर्सी पे, तो उनके एक शिष्य प्रभुपाद से मिलने आए। और वो शिष्य बहुत समय से प्रयास कर रहे थे परंतु प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो वो प्रभुपाद को बोलने के लिए आए थे कि प्रभुपाद मैं अभी छोड़ के जाना चाहता हूँ, भक्तों का संग छोड़ के जाना चाहता हूँ अपने पुराने जीवन में। तो जब आके वो प्रभुपाद के चरणों पर बैठ के इस प्रकार से बोले, तो प्रभुपाद ने जैसे कोई माँ अपने बेटे को गोद में लेती है, उस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको अपनी गोद में रखा, उनके सिर को सहलाना चालू किया और फिर प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, मैं तो इतना बुढ़ा हूँ, मैं तो कब मर जाऊंगा कुछ पता नहीं है, मेरी कब मृत्यु हो जाएगी मुझे भी नहीं पता है, और अभी तुम लोगों को मैंने जो सिखाया है वही मेरी आशा है कि तुम लोग मेरी सिखाई हुई चीजों को पूरे संसार में प्रचारित करोगे। तो तुम क्यों जाना चाहते हो? क्या मैंने कुछ तुमसे गलती की या किसी ने तुम्हें इस प्रकार से बोला? अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे माफ करो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि तुम लोग अगर चले जाओगे तो जो मेरे गुरु का जो मिशन है वो पूरा कैसे होगा? ऐसा बोल के प्रभुपाद उनके सिर को सहलाते सहलाते रोने लगे। तो वो जो शिष्य थे वो भी रोने लगे कि उनके गुरु उनको इतना प्रेम करते हैं। और वो शिष्य अभी भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी के उस वाक्य के कारण कि तुम लोग मेरी आशा हो, उसके कारण मैं आज तक इस्कॉन में हूँ। जब भी मुझे जाने की इच्छा होती है तब मुझे लगता है कि प्रभुपाद इस प्रकार से प्रभुपाद ने मुझसे बोला था तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता। अभी वो इस्कॉन संस्था के बहुत सीनियर शिष्य हैं, सीनियर लीडर भी हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं इस्कॉन संस्था में। परंतु वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि प्रभुपाद की ये बात उनको अभी तक याद रहती है, जब प्रभुपाद ने उनसे बोला था कि मैं तो एक बुढ़ा व्यक्ति हूँ, अगर तुम लोग नहीं होगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वहां से फिर सैन फ्रांसिस्को से भारत आते हैं, और भारत करीब 3-6 महीने तक प्रभुपाद भारत में रहते हैं। और कीर्तनानंद महाराज और अच्युतानंद दो शिष्यों को अपने साथ में लेके आते हैं। पहले प्रभुपाद वृंदावन में रहते हैं, फिर मायापुर कोलकाता में अलग अलग जगह पे जाते हैं। और जहां भी प्रभुपाद जाते हैं वहां पे वो देखते हैं कि उनके उनके गॉड ब्रदर्स किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, और जहां पे उनको ठीक लगता है वो टेक्निक वो आजमाते हैं। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आता है जब वो अच्युतानंद प्रभु के साथ जाते हैं। तो एक मठ में जाते हैं, उस मठ में ज्यादातर बंगाली औरतें होती हैं और ज्यादा लोग नहीं होते हैं, परंतु जो होते हैं बहुत सिंसियर होते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी जो होते हैं बहुत सिंसियर होते हैं। और प्रभुपाद देख के समझ जाते हैं कि वहां पे आध्यात्मिक माहौल अच्छा है। और दूसरे मठ में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं पर ज्यादा सिंसियर नहीं है, कुछ कैजुअल लोग आए हैं बाहर से, कुछ पैंट शर्ट में भी हैं, कुछ अलग अलग तरीके से हैं। तो ये दो मठों को देख के प्रभुपाद अपने शिष्य से पूछते हैं, तुमने क्या सीखा इन दो जगह पे देख के? तो शिष्य बताते हैं, प्रभुपाद हमें इस्कॉन में दोनों को एक साथ रखना चाहिए, हमें क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए है, क्वालिटी भी ज्यादा चाहिए। तब प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, तुम सीख गए जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम सही तरीके से सीख गए। एक मठ में ज्यादा लोग थे परंतु ज्यादा सिंसियर लोग नहीं थे, दूसरे मठ में कम लोग थे परंतु सिंसियर लोग थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन में ज्यादा लोग भी हों और सिंसियर भी हो, तो क्वांटिटी भी ज्यादा हो और क्वालिटी भी अच्छा हो। इस प्रकार से प्रभुपाद वहां पे जब भी भारत में जब भी थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे कैसे प्रचार हो रहा है भारत में। और साथ साथ प्रभुपाद न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों को लेटर भी लिख रहे थे, लेटर भी लिखते थे। प्रभुपाद न्यूयॉर्क के शिष्यों को एक बार लेटर लिखे, तो उस लेटर में हर शिष्य के लिए अलग अलग लेटर लिखा, उस लेटर में अलग अलग सेक्शन अलग अलग शिष्य के लिए था। और पांच पांच लोगों को लेटर लिखा था, पांच लोगों को प्रभुपाद ने सिग्नेचर अलग अलग किया, योर एवर वेल विशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी, पांच बार प्रभुपाद ने सिग्नेचर किया, हर शिष्य के लिए स्पेशल सिग्नेचर, अलग सिग्नेचर। इतने ज्यादा प्रभुपाद केयरिंग थे अपने शिष्यों के लिए। जदुरानी माता जी से उन्होंने लिखा लेटर में कि मुझे पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, परंतु तुम कृष्ण को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, कृष्ण तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। इसी तरह से कीर्तनानंद महाराज को उन्होंने लिखा कि कुकिंग कैसा चल रहा है, सब भक्तों को अच्छे से बना के भोजन खिलाना चाहिए। कीर्तनानंद महाराज को प्रभुपाद किचन आनंद बोलते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, किचन में बहुत अच्छे से सेवा करते थे, इसलिए उनको किचन आनंद बोलते थे। तो हर हर डिसाइपल को प्रभुपाद ने अलग अलग इंस्ट्रक्शन, आप लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, और जब तक मैं जप कर रहा हूँ तब तक हम साथ में हैं, क्योंकि वो अगर हम कृष्ण के चरणों में हैं तो हमेशा साथ में रहेंगे। और जब प्रभुपाद भारत में थे तब उन्होंने अपने गॉड ब्रदर्स को भी इन्वाइट किया कि आप लोग चलिए, अभी तो वहां पे संस्था स्थापित हो गया है, दो जगह पे सेंटर भी है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में, अभी आप चलिए वहां पे हम प्रचार करते हैं, आप ही देखिएगा, हम सभी आपके अंडर में करेंगे। परंतु तब भी उनके गॉड ब्रदर तैयार नहीं हुए, इतना सुनने के बाद भी प्रभुपाद जी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उनके गॉड ब्रदर्स के साथ। तो फाइनली 6 महीने बाद प्रभुपाद ने सोचा कि अभी वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से कुछ फायदा नहीं है, किसी को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे थे। अब वापस प्रभुपाद फिर सैन फ्रांसिस्को जाते हैं। जब सैन फ्रांसिस्को जाते हैं प्रभुपाद, न्यूयॉर्क जाते हैं फिर सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, तो हर लेडी के लिए अलग अलग साड़ी लेके जाते हैं भारत से, क्योंकि वहां पे साड़ियां नहीं अवेलेबल होती हैं। तो प्रभुपाद पहन साड़ी धोती कुर्ता ये सब लेके जाते हैं, अलग अलग गिफ्ट लेके जाते हैं, और हर लेडी के नाम से, हर शिष्या के नाम से उनको गिफ्ट प्रदान करते हैं, हर शिष्य के लिए कुछ कुछ लेके जाते हैं, उनको भी गिफ्ट देते हैं। और प्रभुपाद के एक्चुअली प्रभुपाद के बहुत सारे गुण थे जिनके कारण लोग उनसे आकर्षित होते थे। प्रभुपाद से कुछ ही मिनटों में जो लोग मिलते थे वो उनको प्रेम करने लगते थे, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद का पर्सनैलिटी था कि कुछ मिनट किसी से बात करते थे उसको वो व्यक्ति भक्त बन जाता था। प्रभुपाद ने बहुत अमेजिंग तरीके से भक्त बनाए, साथ साथ प्रभुपाद की विनम्रता भी बहुत एग्जाम्पलरी थी। जैसे एक बार इसमें आता है कि एक एनेक्डोट है, एक बार प्रभुपाद के शिष्यों के बीच में ऐसा कंफ्यूजन चल रहा था कि आध्यात्मिक गुरु शिष्य के हृदय को पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ गुरु तो शिष्य के हृदय को पढ़ सकते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन सबके रिप्रेजेंटेटिव बन के भागवत दासी एक जो थी उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि उनके सेक्रेटरी ने प्रभुपाद को पढ़ के बताया कि ऐसा प्रश्न आया है कि क्या गुरु शिष्य के हृदय को पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया अपने सेक्रेटरी को कि जो जो शुद्ध भक्त हैं, बहुत एडवांस भक्त हैं, उनके लिए तो बहुत कोई कठिन नहीं है, वो तो से आसानी से देख सकते हैं उनके शिष्यों के हृदय में क्या क्या चल रहा है। इस प्रकार से उन्होंने सेक्रेटरी को बोला। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि आंसर क्या लिखना चाहिए कि आप अपने शिष्यों के हृदय को पढ़ सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने तो बोला कि बहुत महान शुद्ध भक्त ऐसा कर सकता है। मैं तो महान शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं तो भक्त भी नहीं हूं, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह से प्रभुपाद ने बोला। तो हम देखते हैं प्रभुपाद की लाइफ में, प्रभुपाद कभी भी इस प्रकार से इतना प्रचार करने के बाद भी कभी भी उनके मन में ऐसा नहीं आता था कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या मेरे द्वारा प्रचार हो रहा है। हमेशा सोचते थे कि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ भक्त बनने का। और हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु को वो क्रेडिट प्रदान करते थे। इसके बाद एक्सपेंशन फास्ट होता है। 1968 के बाद इस्कॉन संस्था का एक्सपेंशन तेजी से होता है। प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को के बाद मॉन्ट्रियल जाते हैं। मॉन्ट्रियल में उनके एक शिष्य रहते हैं, वो प्रचार करके एक सेंटर खोलते हैं। एक बफेलो यूनिवर्सिटी में भी प्रचार होता है, वहां से त्रिविक्रम महाराज आते हैं और भी लोग वहां से ज्वाइन करते हैं। और मॉन्ट्रियल से प्रभुपाद इंग्लिश चैनल पार करने के बारे में सोचते हैं, और उनके तीन गृहस्थ कपल, ये जो तीन कपल का हमने पहले डिस्कस किया, वो तीन गृहस्थ कपल फिर लंदन जाते हैं। प्रभुपाद उनको लंदन भेजते हैं। और जब वो मॉन्ट्रियल में जाते हैं, मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद रहते हैं, तो वो लोग फिर पूछते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद लंदन में जाके हम कैसे प्रचार करेंगे, हम तो कोई जानते नहीं। तो प्रभुपाद उसको एक स्टोरी सुनाते हैं, वो स्टोरी बहुत अच्छी है। प्रभुपाद सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति डांस कर रहा था डांस क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो डांस करते करते वो एक कुर्सी पे बैठा, उस कुर्सी पे नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि कुर्सी या किसी चीज में लग के उसकी शर्ट फट जाती है, शर्ट का पीछे का हिस्सा फट जाता है, खिंच जाती है तो निकल जाती है शर्ट। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अभी बीच मीटिंग में बीच क्लब में शर्ट तो नहीं बदल सकता है, तो एक तरफ से जैसा फटती है शर्ट, उसी तरह से दूसरी तरफ भी फाड़ लेता है वो, और फिर डांस करना चालू करता है। तो लोग जो देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ लोग देख के समझते हैं कि शायद ये फैशन है, तो लोग अपनी अपनी शर्ट फाड़ के उसी तरह से दो तरफ से फाड़ के डांस करना चालू कर देते हैं। तो ये स्टोरी प्रभुपाद सुनाते हैं अपने शिष्यों को, ये बताने के लिए कि आप अगर प्रचार करोगे तो लोग शुरू में हो सकता है आपको अजीब तरीके से लेंगे, परंतु आप अगर प्रचार करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहोगे, तो आप देखोगे लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, वो धीरे धीरे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपको कॉपी करने लगेंगे, इस प्रकार से आप भक्त बन जाएंगे। ये स्टोरी प्रभुपाद ने सुनाया और तीनों गृहस्थ कपल को आशीर्वाद दिया कि आप अभी लंदन जाइए। लंदन जाने के लिए उनको एम्स्टर्डम से होके जाना था। तो लंदन में घुसने के लिए जितने पैसे, मिनिमम पैसे की आवश्यकता होती है, हर देश में जाने के लिए व्यक्ति के पास मिनिमम पैसा होना चाहिए। तो लंदन जाने के लिए जितने मिनिमम पैसे की आवश्यकता होती है, उतना पैसा तीनों के पास नहीं रहता है। उनके पास केवल इतना पैसा रहता है कि एक कपल जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक कपल लंदन जाता है, फिर लंदन से पैसों को बाई पोस्ट वापस भेजते हैं, और फिर दूसरा कपल जाता है, और फिर लंदन अंदर जाके फिर से बाई पोस्ट पैसे को भेजते हैं, फिर तीसरा कपल जाता है। इस प्रकार से ये लोग लंदन में एंटर करते हैं, तीन तीन कपल वहां पे एंटर करते हैं। ये लोग लंदन में प्रचार करते रहते हैं। उसी समय लॉस एंजलिस में भी एक जगह मिलती है, श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहां पे एक चर्च को ढूंढते हैं मंदिर के जैसा, और प्रभुपाद उस चर्च को इनॉग्रेट करते हैं। और ये चर्च जो है, ये इस्कॉन का वेस्टर्न हेडक्वार्टर बन जाता है, पाश्चात्य देशों में भारत इस्कॉन का हेडक्वार्टर के जैसा रहता है। वहां पे सबसे ज्यादा भक्त बाद में निवास करते हैं, और हॉलीवुड हॉलीवुड और बहुत सारी चीजें उसके आसपास में रहती हैं। तो प्रभुपाद लॉस एंजलिस सेंटर को हमेशा आइडियल सेंटर बोलते थे, हर सेंटर को लॉस एंजलिस सेंटर जैसा होना चाहिए। और लंदन में जब ये लोग प्रचार करने जाते हैं, तो लंदन में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक शिष्या से मिलते हैं, विनोद वाणी देवीदासी। परंतु उस शिष्या के घर पे जब जाते हैं भक्त लोग, तो उस शिष्या बोलते हैं कि आप गौड़ी मठ दिल्ली से लेटर लेके आइए, तब आपसे बात करूंगी। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभुपाद से बोलते हैं आप लोग नए रोड करिए। और जॉर्ज हैरिसन, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक होते हैं, वो एप्पल कंपनी के मालिक ऑलरेडी प्रभुपाद के एक वीडियो को सुन चुके होते हैं। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने एक वीडियो बनाया था हरे कृष्ण मंत्र से संबंधित, उस वीडियो को जॉर्ज हैरिसन सुन रहे थे। और बाद में जब लंदन में ये लोग, ये श्याम सुंदर प्रभु जब मिलने जाते हैं जॉर्ज हैरिसन से, तो जॉर्ज हैरिसन खुद ही उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। तब इन लोगों की मित्रता होती है, और फिर जॉर्ज हैरिसन उनके घर पे भी मिलने आते हैं, और इवेंचुअली जॉर्ज हैरिसन फिर उनको अपना स्थान भी प्रदान करते हैं, अपना अपनी जगह जो है वो रेंट पे देते हैं। और फिर जब जगह मिलती है तब ये लोग प्रभुपाद को बुलाते हैं, और फिर प्रभुपाद लंदन आते हैं। लंबी स्टोरी है। तो इसी तरह से प्रभुपाद एक्चुअली लोगों को बहुत अपनी बातों से बहुत चार्म करते थे। एक इसमें डिस्कशन आता है कि एक बार बहुत बड़े कमरे में कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि उसमें बंगाली और गुजराती लोग थे, तो प्रभुपाद ने बोला बंगाली या गुजराती के रूप में जन्म लेना बहुत स्पेशल है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पिता गुजराती थे। हम में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि नंद महाराज वास्तविकता में गुजरात से ब्रज में गए थे, तो गुजराती लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के पिता गुजराती हैं। वो गुजरात से मथुरा वृंदावन में जाके बसे हुए थे। ये इंसिडेंट जब प्रभुपाद ने बताया तो सब लोग खुश हो गए। तो इस तरह से उसके बाद एक नया सेक्शन आता है। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट इस्कॉन का स्टार्ट किया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप में से कोई को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम 15 मिनट और कंटिन्यू करते हैं, जहां तक पहुंचेंगे उसके
अरे
बाद।
कृष्णा,
हाँ यस प्रभु बताइए।
प्रोजेक्ट मैं तो इतना पूछना था, जयपत
हाँ,
अगस्त्य महाराज ये कब आए थे कांटेक्ट में प्रोपर से?
1968 1968 में कांटेक्ट में आए थे जयप्रथा का महाराज। सबसे पहले बैच में जो कांटेक्ट में आए थे उसमें श्याम सुंदर नहीं, मुकुंद महाराज थे, कीर्तनानंद महाराज थे, उमापति प्रभु थे, जदुरानी माता जी थी और जानकी माता जी थी, और कौन था, हरिग्रीव प्रभु थे, और 7-8 लोग थे जो पहली बार दीक्षा लिए थे। फिर सेकंड बैच में जो दीक्षा लिए थे वो लोग सैन फ्रांसिस्को के लोग थे, ये मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज। एक्चुअली जयपथा का महाराज को जयानंद प्रभु लेके आए थे सैन फ्रांसिस्को में। जयानंद प्रभु जब रथ यात्रा का रथ बनाते थे तो एक बार क्या हुआ, जयपथा का महाराज वहां पे थे, 17-18 साल के थे वो, तो वहीं पे जयानंद प्रभु को मिले एक बार। तो जयानंद प्रभु ने बोला कि मैं रथ बना रहा हूँ, तुम मेरी मदद करोगे क्या? उन्होंने बोला हाँ ठीक है, क्या मदद करनी? तो उनको कील ठोकने के लिए उन्होंने बोला। रथ बनाते समय वो कील पे, हाँ कील को पकड़ते थे, वो ये उसको हथौड़ा से मारते थे। तो जयानंद प्रभु बोलते आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, इस तरह से बोल बोल के उनको एंगेज किया, और फिर उनको बोले आप ही इस जगह पे, हर जगह पे कील को ठोकिए। तो इस तरह से उनको जगन्नाथ रथ बनाने में उनकी सेवा ली, और उन्होंने बहुत मदद की फिर। और फिर उनसे बोला कि आप अभी हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? इस तरह से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में ज्वाइन किया था। जयानंद प्रभु उनको ज्वाइन उनको लेके आए थे। इसी तरह से बफेलो यूनिवर्सिटी में जो प्रचार हुआ था उससे त्रिविक्रम महाराज आए थे। तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज ऑलरेडी एक दूसरे के मित्र थे, वो लोग पहले सैन फ्रांसिस्को में जुड़े थे, फिर तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस भेजा। लॉस एंजलिस में प्रीचिंग सक्सेसफुल होने के बाद उनको लंदन भेजा, लंदन में प्रीचिंग सक्सेसफुल होने के बाद उनको भारत में लेके आए, फिर तो भारत में लाके उनको संन्यास दिया जयपुर में। भारत की स्टोरी एक्चुअली लॉन्ग स्टोरी है, अभी तो हम प्रभुपाद भारत आए नहीं, अभी तो हम केवल 1968 तक पहुंचे हैं, 9 साल का बाकी है अभी, 68 से 77 तक। मुझे लगता है 1-2 घंटे और भी लगेगा उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो। तो
हरे कृष्णा
अभी
प्रो।
क्या, यस प्रो।
जी मेरा एक प्रश्न है। ऐसे
हाँ
एक स्टोरी सुना था मैंने कि 3 डिवोटीज थे जो मतलब प्रभुपा जी बता रहे थे कि ऑलरेडी मतलब पहले ही आ चुके वेस्ट में। एक जयपता का स्वामी महाराज थे और 2 डिवोटीज कौन है उनके नाम, मतलब वो
के
प्रभुपा
वेस्ट मतलब
जी पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं, प्रभुपा जी पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं कि 3 भक्तों को ऑलरेडी कृष्णा ने मतलब भेज दिया है वहां पे
मुझे
सहायता के लिए।
बाकी दो का नाम मुझे भी नहीं पता। जयपत का महाराज का नाम तो प्रभुपाद ने ऑफिशियली लिया था, उनका नाम गॉर्डन जॉन था एक्चुअली। तो जय प्रभुपाद ने बोला था कि इनका नाम एक्चुअली गॉर्डन जन है, ये चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट है, चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में थे वो, अभी यहाँ पे गॉर्डन जॉन के रूप में आए हैं अमेरिका में। इस तरह से प्रभुपाद ने जयपता महाराज के बारे में तो बोला था, बाकी दो का मुझे नहीं पता।
ओके प्रभु
जी।
यस प्रभु।
प्रभु जी जब प्रभुपाद जी जहाँ पे बोलते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए इस काल में, हम प्रीचिंग में बहुत बार ऐसे जो नए लोग आते हैं उन्हें भी बोलते हैं कि प्रीचिंग तो हर कोई कर सकता है, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होता है वैसे?
प्रीचिंग तो हर कोई कर सकता है, उसको जितना आएगा उतना ही प्रीचिंग करेगा, वो उसके ऊपर की जो प्रीचिंग होगी वो अपने सीनियर के पास लेके आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति तो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता ना। जैसे हम किसी से मिलते हैं, हम उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, गीता पढ़ने का बोलते हैं, जब वो थोड़ा सीख जाता है तो फिर हम उसको अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जब वो सीनियर उसको सिखाते हैं और वो और मैच्योर होता है तो हम उसको दीक्षा गुरु से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और दीक्षा गुरु फिर उसको प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस तरह से सक्सेशन काम करता है। तो ऐसा नहीं कि सारी शिक्षा हमें देनी है, परंतु हम लोगों को अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, अट्रैक्ट करके हम अपने सीनियर के पास लेके जा सकते हैं। उसमें हमें डिटेच रहना चाहिए कि क्योंकि कई बार हमारे मन में आता है कि हम हर जगह आता है, हर फील्ड में आता है कि अगर हम किसी किसी को अपने सीनियर के पास लेके जाएंगे तो वो व्यक्ति फिर हमें उतना सम्मान नहीं करेगा, बट उस चीज से डिटेच रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति तक नहीं लेके जा सकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी लिमिट है, जो जिस स्तर पे है उसी स्तर तक लोगों को एलिवेट कर सकता है। तो हमारा हम चाहते हैं कि हर भक्त शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, शुद्ध भक्ति तक पहुंचे, तो उसको जब उसका समय आता है हम देखते हैं कि मैच्योर है तब तो हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब सीनियर देखेंगे कि वो मैच्योर है तो वो गुरु के पास लेके जाएंगे उसको, आध्यात्मिक गुरु उनको शरण देंगे, फिर आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाएं उनको मिलेगी तो वो प्रभुपाद के शरण प्राप्त करेंगे। तो प्रचार सभी लोग कर सकते हैं, परंतु डिसिप्लिन सक्सेशन मेंटेन करना चाहिए, जितना हम जानते हैं उतना हम बता सकते हैं, और जब वो व्यक्ति सिंसियर हो जाता है तो हम उसको अपने से ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके
ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं, ऑलमोस्ट 6:55 हो गया। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो इसके आगे का डिस्कस करेंगे, अभी हमने ऑलमोस्ट 1968 तक कंप्लीट किया है, उसके आगे का नेक्स्ट मैं सोच रहा था 2 घंटे में हो जाएगा, बट जब बताना चालू करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं, तो चक्कर में हो नहीं पाता। ओके, जगत गुरु से।